1967 की।
इट इज अ मुरली डेटेड 2 जनवरी 1967।
पहले पेज के अंत में बात चल रही थी।
द टॉपिक दैट वॉज बीइंग डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पेज वॉज,
कोई फेल होंगे तो उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा।
इफ एनीवन फेल्स दे विल लूज देयर पोस्ट।
साक्षी होकर के देखना है।
वी मस्ट ऑब्जर्व एज अ डिटैच्ड स्पेक्टेटर।
फिर ऐसे भी नहीं है कि विकार में जाएं, जाते रहें और कहें ड्रामा में ऐसा ही है।
Furthermore, it is not so that we indulge in vices and continue to do so and say it is fixed this way in the drama.
ऐसों को तो कहेंगे फिर जानवर मिसल।
Such ones will then be considered to be like animals.
दूसरा पेज, ये बुद्धि से समझने की बातें हैं।
Second page. These are things to be understood through the intellect.
बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो।
The father says become soul conscious.
कोई भी देहधारी से ताल्लुक नहीं।
There should be no connection with any bodily being.
देही अभिमानी।
देही अभिमानी, that is soul conscious.
देह और देही।
देह body and देही soul.
देह माना शरीर।
देह means body.
और देही माना शरीर को धारण करने वाली आत्मा।
एंड देही मीन्स द सोल विच टेक्स ऑन द बॉडी।
तो देही अभिमानी माने आत्मा अभिमानी बनेंगे।
सो देही अभिमानी मीनिंग इफ यू बिकम सोल कॉन्शियस।
तो फिर किससे ताल्लुक होगा?
विद हुम विल वी हैव अ कनेक्शन?
आत्मा का ताल्लुक परमात्मा बाप।
द कनेक्शन ऑफ द सोल will be with the supreme soul father.
क्योंकि आत्मा 84 जन्मों से कनेक्शन की बात हो गई।
Because with respect to the soul, it is about the connection of 84 births.
आत्मा जब याद आएगी तो कितने जन्म याद आ जाएंगे?
When we remember the soul, how many births will we remember?
पूरा 84 का चक्कर याद आ जाएगा।
The entire cycle of 84 births will come to the mind.
84 का चक्कर याद आता है माना आत्माभिमानी।
इफ द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स कम्स टू आवर माइंड इट मीन्स वी आर सोल कॉन्शियस।
और सिर्फ ये जन्म याद आता है, इस जन्म के देह के संबंधी याद आते हैं।
बट इफ यू रिमेम्बर ओनली दिस बर्थ, इफ द रिलेटिव्स ऑफ द बॉडी ऑफ दिस बर्थ आर रिमेम्बर्ड।
इसका मतलब
व्हाट डज इट मीन?
आत्माभिमानी या देहाभिमानी?
आर वी सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस?
देहाभिमानी।
वी आर बॉडी कॉन्शियस।
अगर आत्माभिमानी बनेंगे तो देहधारियों से कोई ताल्लुक नहीं।
इफ वी बिकम सोल कॉन्शियस देयर इज नो कनेक्शन विद द बॉडीली बीइंग्स।
हमको तो एक बाप को ही याद करना है।
वी सर्टेनली हैव टू रिमेम्बर ओनली वन फादर।
क्यों?
वाई?
एक बाप को क्यों याद करना है?
Why do we have to remember only one father?
क्योंकि अब अंत में इस सृष्टि का ऐसा समय आने वाला है कोई किसी का साथी नहीं रहेगा।
It is because now, at the end, such a time is going to arrive in this world that nobody will remain anyone's companion.
एक भगवान ही सबका साथी बनने वाला है।
God alone is going to become everybody's companion.
क्या?
What?
जैसे मिसाल के तौर पर यज्ञ के आदि में,
फॉर एग्जाम्पल इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ,
जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून की नदियाँ बह रही थी।
When the war between Hindustan, that is India, and Pakistan took place, rivers of blood were flowing.
और 300-400 कन्याओं माताओं को सिंध हैदराबाद में तालों में जकड़ रखा था।
And 300-400 virgins and mothers were locked up in Sindh, Hyderabad.
तो जिन लोगों ने तालों में जकड़ रखा था, जब खून की नदियाँ बही तो वो छोड़ करके भाग गए।
So, when the rivers of blood flowed, the people who had locked them up left them and ran away.
कोई ने नहीं देखा कि हमारी बेटी कहाँ है, बहन कहाँ है, पत्नी कहाँ है, कौन कहाँ है, बहन कहाँ है।
Nobody searched. Where is my daughter? Where is my sister? Where is my wife? Who is there? Where is my sister?
अपनी अपनी जान लेकर के भागे।
They ran for their own life.
और वो कन्याएं माताएं स्वतंत्र हो गई।
And those virgins and mothers became free.
स्वतंत्र होकर के उनकी जहाँ लगन थी वहाँ कराची में चली गई.
दे बिकेम फ्री एंड दे वेंट टू कराची द प्लेस वेयर दे डिजायर्ड टू गो.
तो कोई से ताल्लुक नहीं रखना है.
सो वी शुड नॉट हैव कनेक्शन विद एनीवन.
अभी तो ये संगम है.
नाउ दिस इज अ कॉन्फ्लुएंस.
सत्युग आदि का और कलयुग अंत का संगम.
इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज एंड द एंड ऑफ द आयरन एज.
बाप जरूर संगम पर ही आवे.
द फादर विल सर्टेनली कम ओनली इन द कॉन्फ्लुएंस एज.
न सत्युग में आवेंगे.
He will not come in the golden age.
न त्रेता में न द्वापर में न कलयुग में.
Neither in the silver age, neither in the copper age, nor in the iron age.
कब आएंगे?
When will he come?
जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग की आदि होनी होती है.
It is when the elevated age is about to begin.
और भ्रष्ट से भ्रष्ट युग पापी युग जिसे कहा जाता है उस कलयुग का अंत होना होता है.
And the worst age, which is called the sinful age, that is the iron age, is about to end.
दोनों का संगम है.
It is a confluence of both.
पुरानी दुनिया को ही पतित दुनिया कहा जाता है.
The old world itself is called the sinful world.
पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है.
The golden age is called the pure world.
मुख्य बात पवित्र बनने की है.
The main thing is about becoming pure.
क्या?
What?
आत्मा जो अनेक जन्म लेते लेते अनेक देहधारियों के संग में आते आते पतित बन गई है.
द सोल विच हैज बिकम सिंफुल बाय टेकिंग मेनी बर्थ्स वाइल कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद मेनी बॉडीली बींग्स.
उस पतित आत्मा को पावन बनाना है.
दैट सिंफुल सोल हैज टू बी मेड प्योर.
कुछ भी हो जाए.
वॉट एवर हैपन्स.
लेकिन नगन नहीं होना है.
बट यू शुड नॉट बिकम नेकेड.
आत्मा अभिमानी बन करके रहेंगे तो बाप का बल मिलेगा.
इफ यू रिमेन सोल कॉन्शियस यू विल रिसीव द पावर फ्रॉम द फादर.
और इसका मतलब ये भी नहीं.
एंड इट डज नॉट मीन
कि आपस में ही लटकते रहना है.
दैट यू शुड बी इंटेंगल्ड इन ईच अदर.
नाम रूप में फंस जाना है.
और दैट यू शुड इंटेंगल योर सेल्फ in the name and form of someone either.
आशिक मासूब
the lover and the beloved
जो होते हैं वो कब आपस में लटकते नहीं है.
are never entangled in each other.
सिर्फ एक दो को देख करके ही खुश हो जाते हैं.
they feel happy just by looking at each other.
बाकी लटकना आदि कुछ भी होने की बात नहीं है.
as for the rest there is no such thing as becoming entangled etc. in each other.
वो तो देखने से ही खुश होते हैं.
They feel happy just by looking at each other.
लटकने वाले में काम विकार कहां से जरूर आ जाता है.
A trace of the vice of lust definitely develops in the one who becomes entangled in someone.
जो नाम रूप में फंस करके लटकते हैं वो और ही नुकसान कर देते हैं.
Those who are ensnared by the name and form of someone and so entangle themselves in them bring more harm.
वो आशिक मासूक का विकार में नहीं जाते.
Those lovers never indulge in vices.
एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं.
They love each other truly.
यहाँ तो माया ऐसी चंचल है जो फीमेल्स आपस में एक दो के साथ लटक पड़ती है.
Here माया is so inconstant that is chanchal that the females become involved with each other.
ये बड़ा कड़ा रोग है.
This is a very powerful disease.
नाम रूप में फंसने का.
Of becoming entangled in the name and form of someone.
जब तक एक दो की भाकी नहीं पहनेंगे उनकी गोद में नहीं जावेंगे तब तक उनको नींद ही नहीं आएगी.
Until they embrace each other, until they go on their lap, they will not get any sleep at all.
भाकी पहनने बगैर जैसे कि प्राण जाते रहते हैं.
They feel as if they are dying if they don't embrace each other.
ये सारी माया का रूप है.
All this is a form of Maya.
अनेक प्रकार के सट के माया लगाई देती है.
माया लैशेस आर इन डिफरेंट वेज.
तुम बच्चों को जो बुद्धि में आना चाहिए पुराना 63 जन्म का किचरा है.
इट शुड कम टू द इंटेलेक्ट ऑफ यू चिल्ड्रन दिस इज द ओल्ड गार्बेज ऑफ 63 बर्थ्स.
जो अभी संगम युग में आकर के उदय होता है.
विच इमर्जेस नाउ आफ्टर कमिंग इन द कॉन्फ्लुएंस एज.
इसमें आसक्ति रखनी नहीं चाहिए.
We should not have attachment in it at all.
कोई को भी देह में नहीं फंसना है, एक बाप को याद करना है.
नो वन शुड इंटेंगल देमसेल्व्स इन द बॉडी. वी शुड रिमेम्बर वन फादर.
है तो ये बहुत मंजिल भारी.
दिस इज अ वेरी हाई गोल इंडीड.
मंजिल भारी क्यों है?
वाई इज द गोल हाई?
क्योंकि 63 जन्मों की रील अभी संगम युग में घूम रही है.
इट इज बिकॉज द रील ऑफ 63 बर्थ्स इज रोटेटिंग नाउ इन द कॉन्फ्लुएंस एज.
विश्व का मालिक बनना है.
वी हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड.
ऐसे भी भारी मंजिल है.
इवन सो इट इज अ हाई गोल.
जितना ऊंचा पुरुषार्थ उतनी भारी मंजिल.
द हायर द पुरुषार्थ दैट इज स्पिरिचुअल एफर्ट द हायर इज द गोल.
भारी मंजिल को भी सहज कैसे बनाते हैं?
हाउ डज ही मेक इवन अ हाई गोल इजी?
भारत का प्राचीन योग तो गाते भी है, परंतु इससे क्या हुआ ये कोई नहीं समझ सकते.
द एंशियंट योगा ऑफ इंडिया इज ऑल्सो प्रेज्ड बट नोबडी कैन अंडरस्टैंड वॉट इट्स रिजल्ट वॉज.
तुम समझाते हो योग बल से हम विश्व में मालिक बनते हैं.
यू एक्सप्लेन वी बिकम द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द पावर ऑफ योगा दैट इज योग बल.
इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है.
देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइटिंग इन इट.
पांडवों ने बरोबर राज्य लिया.
द पांडवास डिड अचीव द किंगडम.
परंतु सुप्रीम पंडे के साथ योग लगाया.
हाउएवर दे डेवलप्ड द कनेक्शन विद द सुप्रीम गाइड दैट इज पंडा.
क्या?
व्हाट?
सुप्रीम पंडा.
द सुप्रीम गाइड.
तो इसका मतलब नंबर वार पंडे और भी हुए ना.
सो इट मीन्स that there are also some other guides number wise that is with different capacities aren't there.
Unhon pando ke sath yog nahi lagaya.
They did not develop a connection with those guides.
Supreme pande ke sath yog lagaya. Supreme panda kaun hua?
They developed a connection with the supreme panda. Who is the supreme panda?
Shiv baba. Supreme pande ke sath yog lagaya to vikram vinash hua.
When they developed a connection with the supreme panda their sins were destroyed.
पंडे के साथ जाना होता है ना.
वी हैव टू गो विद द गाइड हैवंट वी.
गाइड करता है ना पंडा.
अ पंडा गाइड्स अदर्स डजंट ही.
तो जब विक्रम विनाश हुए तब दूसरे जन्म में राजा ही पद पाया.
सो वेन द सिंस वर डिस्ट्रॉयड इट इज देन दैट दे अचीव द पोस्ट ऑफ किंगशिप इन द नेक्स्ट बर्थ.
ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने की मिशन.
दिस इज इंडीड अ मिशन टू बिकम प्रिंस प्रिंसेस.
जैसे वो रामकृष्ण की मिशन है.
जस्ट एज दैट वन इज रामकृष्णास मिशन.
वैसे ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की मिशन है.
सिमिलरली दिस इज द मिशन टू बिकम प्रिंस प्रिंसेस.
दुनिया में अलग अलग संस्थाएं होती है.
देर आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड.
उनका अपना अपना एम ऑब्जेक्ट होता है.
दे हैव देयर ओन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव.
डॉक्टरी का कॉलेज होगा तो डॉक्टर बनावेगा.
इफ इट इज अ मेडिकल कॉलेज इट विल मेक द स्टूडेंट्स डॉक्टर्स.
इंजीनियरिंग का कॉलेज होगा इंजीनियरिंग बनावेगा इंजीनियर बनावेगा.
इफ इट इज एन इंजीनियरिंग कॉलेज इट विल मेक द स्टूडेंट्स इंजीनियर्स.
वकील का कॉलेज होगा जज बनावेगा वकील बनावेगा.
इफ इट इज अ कॉलेज ऑफ लॉ इट विल मेक द स्टूडेंट्स जजेस एडवोकेट्स.
और ये
एंड वॉट अबाउट दिस कॉलेज.
ये भगवान आकर के राजयोग सिखाते हैं तो कौन सा कॉलेज खोलते हैं.
When God comes and teaches Rajyoga, which college does he open?
Rajyoga University.
He starts the Rajyoga University.
इसमें Rajyoga सिखाया जाता है राजा बनाने के लिए.
In this university, Rajyoga is taught to make kings.
जन्मांतर के राजाएं हुए.
There have been kings for many births.
छोटे बड़े राजाएं हुए महाराजाएं हुए.
There have been small and big kings, that is Raja. There have been Maharajas, that is emperors.
उनको राजा ही करना किसने सिखाया.
Who taught them to rule?
कोई कॉलेज खोला क्या.
Was any college opened for them?
कोई ने पढ़ाई किया.
Did anyone teach them that knowledge?
है? बिना पढ़ाई राजा हुए.
Did they become kings without being taught that knowledge?
राजा महाराजा बनने के लिए कोई ने तो पढ़ाई होगी. कब तो पढ़ाई होगी.
Someone must certainly have taught the knowledge at some point of time to become Raja Maharaja.
वो controlling power कहाँ से आई.
How did they develop the controlling power?
सबके अंदर तो controlling power नहीं आती.
Not everyone develops the controlling power.
तो ये संस्कार भरते हैं संगम युग.
So these sanskars are recorded in the soul in the confluence age.
जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं,
when God the Father comes in this world,
तो आकर के राजीव की पढ़ाई पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई से ऐसी शक्ति भरती है आत्माएं.
He comes and teaches the knowledge of Raj Yoga, and the souls accumulate such power in them through the knowledge.
कि जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं.
That they become kings for many births.
परंतु माया भी पीछे पड़ती है.
But Maya also chases them.
राजयोगियों के पीछे माया पड़ती है.
Maya chases the Rajyogis.
ऐसे सहज विकर्म विनाश नहीं होने देती.
She does not allow the sins to be destroyed so easily.
वो सन्यासी है, उनकी मिशन अलग होती है.
The mission of those sannyasis is different.
और तुम्हारी तो ये ईश्वरीय मिशन है.
And this mission of yours is a divine mission, that is from God.
मनुष्य जो पतित बन गए हैं, उनको श्रीमत पर पावन बनाने की मिशन है.
It is a mission to purify the human beings who have become sinful on the basis of श्रीमत.
कहते भी है पतित पावन आओ.
They also say, O purifier of the sinful ones.
ऐसे क्यों कहते हैं?
Why do they speak like this?
आओ ऐसे क्यों कहते हैं?
Why do they say come?
जरूर आकर के पतितों को पावन बनाया होगा.
Certainly he must have purified the sinful ones after coming.
ऐसे थोड़े ही कि आता है और ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुना के चला जाता है.
It is not that he comes, narrates the knowledge through the body of Brahma and then departs.
और फिर बाद में पतित अपने आप पावन बनते रहते हैं.
And later on the sinful ones keep becoming pure on their own.
या जिन्होंने ब्रह्मा के सन्मुख रह करके ज्ञान सुना.
Or that the ones who heard the knowledge while being face to face to Brahma.
वो हमको पतित बना पतित से पावन बनाते रहते हैं.
Continue to transform us from sinful ones to pure ones.
ऐसी कोई बात नहीं.
There is no such thing.
पतितों को पावन स्वयं बाप आकर के बनाते हैं.
The father himself comes and purifies the sinful ones.
बाप के अलावा और कोई पतितों को पावन बना नहीं सकता.
No one other than the father can transform the sinful ones into pure ones.
और जिनको पतित से पावन बनाते हैं उनकी भी निशानी बता दी.
And the sign of those whom he purifies from sinful ones has also been mentioned.
जो पतित से पावन बनते हैं वो ही बुलाते हैं.
Only those who transform from sinful ones to pure ones call the father.
जो पतित से पावन बनते नहीं वो कभी बुलाते भी नहीं.
Those who do not transform from sinful ones to pure ones never call the father at all.
63 जन्मों में भी नहीं बुलाते.
They do not call him in the 63 births.
और संगम युग में भी नहीं बुलाते.
And they do not call him in the confluence age either.
जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी.
Certainly, they will be the souls who convert into other religions.
उन पर दूसरे धर्मों का छिलका लगा हुआ होगा.
They will be the souls covered by the peels of other religions.
तो वो क्यों बुलाएंगी? वो किसको बुलाएंगी?
So, why will they call him? Whom will they call?
जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण होंगे वो किसको बुलावेंगे?
Whom will the Brahmins who convert into other religions call?
वो अपने धर्म पिताओं को बुलाएंगे?
They will call their religious fathers.
तुम पतित से पावन बनते हो, तुम हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी, इसलिए तुम बुलाते हो.
You transform from sinful ones to pure ones. You are Suryavanshi, that is belonging to the Sun dynasty. Chandravanshi, that is belonging to the Moon dynasty. That is why you call.
कहते भी है पतित पावन सीताराम.
They also say, O Sitaram, the purifier of the sinful ones.
किसको बुलाते हैं पतित पावन कहके?
Whom do they call by saying the purifier of the sinful ones?
सीताराम को बुलाते हैं ना?
They call Sitaram, don't they?
धर्म पिताओं को क्यों नहीं बुलाते?
Why don't they call the religious fathers?
क्योंकि धर्म पिताओं ने तो इस सृष्टि पर आकर के पतितों को पावन बनाया नहीं, ये सृष्टि तो और ही पतित होती चली गई।
इट इज बिकॉज द रिलीजियस फादर्स केम इन दिस वर्ल्ड एंड डिड नॉट ट्रांसफॉर्म द सिंपल वंस इनटू प्योर वंस, इंस्टेड दिस वर्ल्ड कंटिन्यू टू बिकम इवन मोर सिंपल।
राम और सीता के द्वारा परमात्मा शिव इस सृष्टि पर प्रवेश करके सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं।
द सुप्रीम सोल शिव कम्स इन दिस वर्ल्ड एंड प्यूरिफाइज द एंटायर वर्ल्ड थ्रू राम एंड सीता आफ्टर एंटरिंग देम।
जो पूरे पूरे पावन बनते हैं वो देवता कहे जाते हैं।
दोज हू बिकम कम्प्लीटली प्योर आर कॉल्ड डेटीज।
अधूरे पावन बनते हैं तो देवता नहीं कहे जाते।
दोज हू बिकम इनकम्प्लीटली प्योर आर नॉट कॉल्ड डेटीज।
क्या कहे जाते हैं?
व्हाट आर दे कॉल्ड?
दैत्य।
दे आर कॉल्ड दैत्य, दैट इज डीमंस।
द्वापर युग से इब्राहिम के आने के बाद जो भी इस सृष्टि पर आत्मा आती है वो सब क्या हो गई?
व्हाट आर ऑल द सोल्स हु कम इन दिस वर्ल्ड सिंस द कॉपर एज आफ्टर द अराइवल ऑफ इब्राहिम?
दैत्य हो गए।
दे आर डीमंस।
और जो पहले?
एंड व्हाट अबाउट दोस हु केम अर्लियर, दैट इज बिफोर द अराइवल ऑफ इब्राहिम?
इब्राहिम के आने से पहले जो आत्माएं ऊपर से उतरती है वो हो गई देवता।
दोस सोल्स हु डिसेंड फ्रॉम अबाउट बिफोर द अराइवल ऑफ इब्राहिम आर डेटीज।
उन देवताओं में भी
इवन अमंग दोस डेटीज
कोई 84 जन्म लेने वाले हैं और कोई कम जन्म लेने वाले।
सम टेक 84 बर्थ्स एंड सम टेक अ लेसर नंबर ऑफ बर्थ्स।
क्योंकि सत्यों की आदि में तो आबादी बहुत थोड़ी होती है।
बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज द पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल।
और त्रेता के अंत में?
एंड व्हाट अबाउट द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द सिल्वर एज?
10 करोड़ आबादी हो जाती है।
द पॉपुलेशन रीचेस 10 करोड़, दैट इज 100 मिलियन।
तो जो 10 करोड़ आबादी वाली आत्माएं हैं वो सब एक जैसी ब्राह्मण नहीं होती है संगम युग में।
सो ऑल द सोल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द 10 करोड़ पॉपुलेशन आर नॉट ब्राह्मण्स इक्वली इन द कॉन्फ्लुएंस एज।
9 कोटी के ब्राह्मण गाए गए हैं।
देर इज द प्रेज ऑफ द ब्राह्मण्स बिलोंगिंग टू 9 कैटेगरीज।
तो जरूर वो ऐसी आत्माएं जो 9 धर्मों में कन्वर्ट होती है।
सो सर्टेनली दे आर सच सोल्स हु कन्वर्ट इनटू 9 रिलीजन्स।
तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पद के, तुम कभी कन्वर्ट नहीं होते हो।
यू फॉर्मली बिलोंग टू द एंशियंट देवी रिलीजन, दैट इज देवी देवता सनातन धर्म। यू नेवर कन्वर्ट।
जीते जी तुम कन्वर्ट नहीं होते हो।
यू डू नॉट कन्वर्ट वाइल बीइंग अलाइव।
कन्वर्ट शरीर होता है या आत्मा होती है?
आत्मा होती
है।
डज द बॉडी कन्वर्ट और डज द सोल कन्वर्ट? समवन सेज द सोल।
आत्मा कन्वर्ट होती है या शरीरधारी कन्वर्ट होता है?
डज द सोल कन्वर्ट और डज द बॉडीली बीइंग कन्वर्ट?
मान लो महात्मा बुद्ध ऊपर से आए और उन्होंने सिद्धार्थ में प्रवेश किया।
सपोज महात्मा बुद्ध केम फ्रॉम अबाव एंड एंटर्ड इनटू सिद्धार्थ।
तो सिद्धार्थ कन्वर्ट हुआ।
सो सिद्धार्थ कन्वर्टेड।
क्या कहेंगे? सिद्धार्थ कन्वर्ट हुआ और सिद्धार्थ का बाप शुद्धोदन।
व्हाट विल बी सेड? सिद्धार्थ कन्वर्टेड एंड द फादर ऑफ सिद्धार्थ इज शुद्धोदन।
शुद्धोदन कन्वर्ट नहीं हुआ।
शुद्धोदन डिड नॉट कन्वर्ट।
वो कन्वर्ट नहीं हुआ, उस जन्म में कन्वर्ट नहीं हुआ।
ही डिड नॉट कन्वर्ट। ही डिड नॉट कन्वर्ट इन दैट बर्थ।
अब उसके बच्चे ने चीन जापान जैसे देशों में, इंडोनेशिया जैसे देशों में जाकर के भारी परिवर्तन कर दिया।
नाउ हिज चाइल्ड दैट इज सिद्धार्थ went to countries like China, Japan, Indonesia, etc. and brought about a great transformation.
तो उसकी वाहवाही बाप तक पहुंचती है।
So his glory reaches the ears of his father.
तो बाप सोचता है मैंने जिस बच्चे को बाहर कर दिया, निकाल करके देश निकाला दे दिया, वो बच्चा देश विदेश में इतनी शोहरत पा रहा है।
So the father thinks the son whom I sent out, banished from the country, is earning so much fame in the country and abroad.
दुनिया की इतनी ढेर सारी आत्माओं को अपने अपने तरीके से चला रहा।
he is directing so many souls of the world according to his ways.
तो उसके प्रति लगाव तो जाता है.
So he does develop attachment for him.
लेकिन वो इतनी पक्की और हट्टी आत्माएं होती हैं कि उस जन्म में फिर भी बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करती.
But he is such a strong and obstinate soul that he does not accept Buddhism in the same birth.
तो जो दिल जाता है ना.
So the heart is attracted towards him, isn't it?
वो दिल जाने की वजह से अंतमते सुगते हो जाती.
Because of the heart being attracted to him, his final thoughts lead him to the final destination, that is, antmate sogate.
300-400 वर्षों के बाद वो आत्मा बौद्ध धर्म में जाकर के जन्म लेती है.
After 300-400 years, that soul is born in a family of people following Buddhism.
तो वो आत्मा जाके जन्म लेती है, उसे कन्वर्शन कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा?
So, when that soul is born after going, that is, leaving the body, will it be called conversion or not?
Someone said, it will be said so. Will it be called conversion?
Atma jaake janm leti, usko conversion kaha jayega?
If the soul goes and is born in that religion, will that be called conversion?
Sharir rehte rehte koi convert ho jaye, to kahenge convert hua.
If someone converts while being alive, it will be said that he converted.
और शरीर ही खत्म हो गया फिर तो आत्मा आत्मा के लिए थोड़ी कहा जाएगा कि वो कन्वर्ट हो गई.
But if the body itself is gone, it will not be said for the soul that it converted.
कन्वर्ट वो कहा जाता है जो अपने जहाँ जन्म लेता है जिस धर्म में.
He is said to have converted the one who is born in a particular religion.
और वहाँ रहते रहते जीवन रहते रहते दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा.
And while being there in that religion, while being alive, converts into another religion.
तो कहेंगे कन्वर्ट होना.
Then it will be called conversion.
नहीं तो कन्वर्ट होना थोड़ी कहा जाएगा.
Otherwise, it will not be termed conversion.
वो तो आत्मा अपने लगाव के अनुसार अगले जन्म में ऑटोमेटिक दूसरे धर्म में जाके कन्वर्ट हो गई.
The case is that the soul converted in another religion automatically in the next birth as per its attachment.
उसकी उसने अपनी गलती नहीं की, खुद उस देश को धोखा नहीं दिया.
It itself did not commit any mistake. He himself did not cheat the country.
तो कहते हैं ए पतित पावनाओ.
So it is said, O purifier of the sinful ones, come.
पतित पावनाओ. तो किसको बुलाते हैं?
When they call, O purifier of the sinful ones, come. Whom do they call?
है? Supreme soul ज्योति बिंदु के लिए कहें आओ.
If it is said, come, for the supreme soul, the point of light.
तो बिंदु का आना और बिंदु का जाना ये तो कोई मतलब की बात ही नहीं.
There is no sense at all in the coming and going of a point.
आना जाना किसका कहेंगे?
For whom will it be said that it comes and it goes?
साकार का कहेंगे या निराकार के लिए कहेंगे?
Will it be said for the corporeal or for the incorporeal?
साकार के लिए कहेंगे. वो साकार में आता है, किस साकार में आता है?
It will be said for the corporeal. He comes in a corporeal being. In which corporeal being does he come?
पतित पावन सीताराम कहा जाता है.
It is said सीताराम. The purifier of the sinful ones.
Sita ka naam kyun lete hain?
Why is the name of Sita uttered?
Sita mein bhi pravesh karta hai kya? Nahi.
Does he enter into Sita also? No.
Karta hai ki nahi karta hai?
Does he enter or not? Someone said he enters.
Karta hai.
Does he enter?
Karta hai. Hai, malum hai.
Does he enter? Do you know?
Sita में प्रवेश करता है, इसका प्रूफ मिलता है?
Do you find any proof of his entrance into Sita? Someone said, yes, in the beginning of the yajna.
यज्ञ के आदि में प्रवेश किया, उसका प्रूफ मिला?
Did you find the proof about his entrance into her in the beginning of the yajna?
मैं तो प्रवेश मिला.
Someone said, he entered into Gita Mata.
गीता माता में प्रवेश किया, काय के लिए प्रवेश किया?
he entered into Gita Mata, that is Mother Gita. For what did he enter into house?
भगवान आता है तो किस लिए प्रवेश करता है?
When God comes, why does he enter?
ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश करता है या भक्ति सिखाने के लिए प्रवेश करता है?
Does he enter to narrate knowledge or does he enter to teach bhakti?
ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश करता है तो प्रवेश किया सीता माता में ज्ञान सुनाने के लिए.
He enters to narrate knowledge. So did he enter into Sita Mata, that is Mother Sita, to narrate knowledge?
ज्ञान सुनाने के लिए तो प्रवेश नहीं किया.
He did not enter into her to narrate knowledge.
तो भले उस समय ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश नहीं किया.
So it doesn't matter that he did not enter into her to narrate knowledge at that time.
लेकिन उस समय जो भी आत्मा सहयोगी बनती हैं यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा के साथ साथ.
But all the souls that become helpful at that time in the beginning of the yajna along with the soul of Ram.
वो आत्माएं सारी ही दूसरा धनुष लेकर के जब आती है तो वो एडवांस पार्टी जब कही जाती है.
When all those souls come in knowledge having been reborn, when it is called the advance party.
तो उसमें जो भी 108 मणके हैं नंबर वार उन सब में परमात्मा शिव का प्रवेश होता है.
The supreme soul Shiva enters into all the 108 beads who are number wise, that is according to their role.
इसलिए वो रुद्रमाला के मणकों में मुख बनाए जाते हैं.
That is why mouths are created on the beads of the rosary of Rudra, that is Rudramala.
बनाए क्या, वो तो बने बनाए होते हैं.
They are not created, they are already formed.
कोई में एक मुख, कोई में चार मुख, कोई में दो मुख, कोई में 14 मुख.
There is one mouth in some beads, there are four mouths in some, there are two mouths in some, and there are 14 mouths in some.
तो जो मुख दिए है वो प्रवेश होने की यादगार है.
So the mouths that have been depicted are memorials of the entry of souls.
एक आत्मा ने प्रवेश किया तो एक मुख.
If one soul enters, there is one mouth on the bead.
दो ने प्रवेश किया तो दो मुख.
If two souls enter, there are two mouths.
और 10-14 ने प्रवेश किया तो 10 और 14 मुख.
And if 10-14 souls enter, there are 10 and 14 mouths respectively.
ज्यादा आत्माएं प्रवेश करती है इसका मतलब वो आत्मा दूसरे धर्म का छिलका लेकर के आती है.
The entry of more souls means that the soul comes with the peels of other religions.
और एक ही प्रवेश करता है माना.
And if only one enters, it means that
वो आत्मा कभी कन्वर्ट होने वाली नहीं है.
The soul is never going to convert.
यानी जन्म लेने पर भी कन्वर्ट होगी नहीं.
It means that it will not convert even after being born.
जन्म लेना माना.
What does being born mean?
इसे शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए.
For example, if a soul leaves the body and after leaving the body it converts to another religion,
वो भी नहीं हो सकता.
That is not possible either.
हाँ, पतितों का संग का रंग लग सकता है.
But yes, it can be colored by the company of the sinful ones.
जैसे भारतवासियों को पतितों का संग लगता है.
Just as the Indians, that is the Bharatvasis, are colored by the company of the sinful ones.
इतना संग का रंग लगता है कि मुसलमान चार चार बीबियां रखते हैं.
दे आर कलर्ड बाय द कंपनी टू सच एन एक्सटेंट दैट द मुस्लिम्स कीप अप टू 4 वाइव्स.
और हिंदू राजाओं ने ढेर की ढेर बीबियां रखी.
बट द हिंदू किंग्स केप्ट अ लॉट ऑफ वाइव्स.
ढेर की ढेर रानियां रखना शुरू कर दिया.
दे स्टार्टेड कीपिंग अ लॉट ऑफ क्वींस.
और मिसाल देना शुरू कर दिया कृष्ण को 16,000 रानियां थी तो हम क्यों नहीं रह सकते.
एंड स्टार्टेड गिविंग द एग्जाम्पल कृष्णा हैज 16,000 क्वींस सो व्हाई कांट वी हैव एज मेनी.
तो ज्यादा पतित कौन हुए, मुसलमान ज्यादा पतित हुए या हिंदू ज्यादा पतित हुए.
सो हु आर मोर सिंफुल, आर द मुस्लिम्स मोर सिंफुल और द हिंदूज मोर सिंफुल.
हिंदू ज्यादा पतित हो
गए. द हिंदूज बिकेम मोर सिंफुल.
तो भारतवासी ज्यादा पतित बनते.
सो द इंडियंस बिकम मोर सिंफुल.
क्यों पतित बनते हैं, क्योंकि वो बंदरपना अपना लेते.
Why do they become sinful? It is because they adopt the behavior of monkeys.
बंदर जो है वो दूसरों की नकल करता है.
The monkey copies others.
भारतवासियों ने भी विदेशियों की नकल करना शुरू कर दिया.
द इंडियंस ऑल्सो स्टार्टेड कॉपीइंग द फॉरेनर्स.
भारतवर्ष में तो राम के लिए गायन है, राम को सैंपल रखा जाता है.
बट इन इंडिया राम इज प्रेज्ड, राम इज कंसिडर्ड एज अ सैंपल, दैट इज मॉडल.
कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे.
थिंकिंग दैट राम वॉज द हाइएस्ट अमंग ऑल द सोल्स इन फॉलोइंग द कोड ऑफ कॉन्डक्ट, दैट इज मर्यादा पुरुषोत्तम.
सारे जीवन में उन्हें एक ही पत्नी व्रतधारी रहना था.
ही वॉज टू रिमेन फेथफुल टू वन वाइफ इन हिज एंटायर लाइफ.
इसलिए भारतवासियों को पवित्रता के लिए विशेष माना जाता है.
That is why Indians are known especially for their purity.
दूसरे धर्मों में पवित्रता की इतनी मान्यता नहीं है क्योंकि वहाँ छूट दी हुई है.
Purity is not given that much importance in other religions because they have been given freedom there.
ज्यादा से ज्यादा शादियाँ करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो.
To marry as many times as possible, have as many children as possible.
सरकार भी उनको इनाम देती है.
Even the government gives them prizes.
कि ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो हमारी ज्यादा जनरेशन बढ़ेगी, दुनिया में हमारा नाम बाला होगा, हमारी ताकत बढ़ेगी.
If you produce more children, our generation will increase more. We will become famous in the world. Our strength will increase.
त्रेता युग जब खत्म होता है,
When the silver age ends,
तो उस समय देवता ही देवता तो होते हैं इस पृथ्वी पर.
There are just deities on this earth at that time.
दूसरे धर्म की आत्माएं तो होती नहीं.
The souls of other religions do not exist at all.
इब्राहिम जैसे ही आते हैं तो वो उनके प्रवेश करने मात्र से ही दृष्टिवृत्ति खराब होने लगती है हिंदुओं.
As soon as the soul of Abraham comes, the vision and vibrations of the Hindus start to be polluted just by his entry in the root soul.
और इब्राहिम के पीछे पीछे जो भी आत्माएं आती हैं परम धाम से, वो सब प्रवेश करती हैं.
एंड ऑल द सोल्स हु कम फ्रॉम द सुप्रीम अबोर्ड दैट इज परम धाम फॉलोइंग इब्राहिम एंटर देयर रिस्पेक्टिव रूट सोल्स.
उनके प्रवेश करने से जो देवी देवता धर्म की आत्माएं जो बाद में हिंदू कही गई, उन सब की दृष्टिवृत्ति खराब होती.
देयर एंट्रेंस पल्यूट्स द विजन एंड वाइब्रेशंस ऑफ द सोल्स बिलोंगिंग टू द एंशिएंट डेटी रिलीजन who were later called Hindus.
दृष्टि खराब हुई, वृत्ति खराब हुई.
It polluted their vision, it polluted their vibration.
और वाचा भी खराब होती है और कर्मेंद्रियां भी भ्रष्ट होती
है. In addition, their speech is polluted as well as the organs of action become unrighteous.
ऐसे जब भ्रष्ट बनते हैं तो उसमें जो सूर्यवंशी होते हैं वो भड़क जाते हैं.
When they become unrighteous in this way, the souls belonging to the Sun dynasty, that is Suryavanshi, among them become furious.
Suryavanshi bhadakte hain aur jhagda shuru ho jata hai.
The Suryavanshis become furious and the fight begins.
Apna apna province alag alag kar dete hain.
They create their own provinces.
Jo Islami hai unko bhaga diya jata hai Arab deshon ki taraf, khadeed diya jata hai.
The Islamic people are chased away, driven away towards the Arab countries.
Wo wahan ja kar ke apna Islam dharm sthapan kar lete hain.
They go there and establish their Islam religion.
वहाँ जाकर के वो जनरेशन उनको बढ़ानी है.
After going there, they have to increase their generation, that is population.
इसलिए भाई बहनों में भी उनमें पहले शादी होती थी.
That is why earlier marriages used to be conducted even between brothers and sisters among them.
सगे भाई बहनों में शादी होती है, अभी मुसलमानों सगे भाई बहनों में शादी नहीं होती.
Marriages were conducted even between the brothers and sisters in blood relation. Now among the Muslims, marriage does not take place between the brothers and sisters in blood relation.
सिर्फ दूध बचाते हैं.
They just salvage the family honor.
बाकी मामा की लड़की, चाचा की लड़की, जो ताऊ की लड़की, उनके साथ भी शादी कर लेते.
As far as the daughter of the mama, that is maternal uncle, the daughter of the chacha, that is father's younger brother, and the daughter of the ताऊ, that is father's elder brother is concerned, they marry even them.
क्यों?
Why?
क्योंकि उन्हें तो अपनी जनरेशन बढ़ाने में ही फायदा है.
It is because they benefit only by increasing their generation.
हिंदुओं की जनरेशन थोड़ी होती जाती और दूसरे धर्म वालों की जनरेशन बढ़ती चली जाती.
The generation of the Hindus continues to decline and the generation of the people of other religions continues to increase.
जब ऐसे ऐसे होता है तो हिंदू बहुत कमजोर पड़ जाते हैं.
When such things take place, the Hindus become very weak.
भारत की हालत जो है बहुत खस्ता हो जाती है.
India's condition becomes very miserable.
जनसंख्या के आधार पर ही नहीं, क्वालिटी के आधार पर.
Not only from the point of view of the population, but also from the point of view of the quality.
वो अपने अंदर हीन भावना आ जाती है कि दूसरे देश जो है बहुत ऊंचे हैं और हम नीचे.
An inferiority complex develops in them. The other countries are very superior and we are inferior.
इसका प्रूफ ये है कि यहाँ के जितने भी जहीन वर्ग जो अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग होते हैं वो सब विदेश भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए.
Its proof is that all the people of the intelligent sections here, all the nice intelligent people are running to the foreign countries to earn money.
भारतीय सरकार उनको उनका वेतन नहीं दे पाती.
The Indian government is unable to give them due salary.
उनकी कदर नहीं कर पाती.
It is unable to value them.
जो जहीन है भी इंडिया में जो दो चार तो उनको कोई पूछता नहीं.
And whatever few intelligent people there are in India, no one shows due regard to them.
ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो विदेशों को बहुत ऊंचा समझते हैं और भारत को बहुत नीची दृष्टि अपने को ही अपने को अपने आप अपने को नीची दृष्टि से देखने लग पड़ते हैं.
When the situation becomes such, they consider the foreign countries to be very high and start holding India in very low esteem. They start holding themselves in low esteem.
विदेश की शिक्षा को बहुत अच्छा समझते हैं.
They consider the foreign education to be very good.
विदेश के खान पान को बहुत अच्छा समझते हैं.
They consider the foreign food and drinks to be very good.
नहीं तो भारतवासियों को अन्न तो बहुत शुद्ध था.
Otherwise, the food of Indians was very pure.
देवताएं कोई मांस गोश्त मछली अंडा शराब नहीं खाते थे.
Deities did not used to eat meat, flesh, fish, eggs और ड्रिंक एल्कोहल एक्सेट्रा.
देवताओं का जो भोजन था वो प्रकृति मुहैया कराती थी.
द फूड फॉर डेटीज यूज टू बी प्रोवाइडेड बाई नेचर.
सात्विक जीवन और सात्विक प्रकृति.
ट्रू लाइफ एंड ट्रू नेचर.
इतनी सात्विक प्रकृति थी कि उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था.
नेचर वॉज सो ट्रू दैट दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी वर्क.
कोई कल कारखाने नहीं थे.
देर वर नो फैक्ट्रीज मिल्स एक्सेट्रा.
और फिर भी प्रकृति के द्वारा सब कुछ मुहैया होता था.
एंड येट नेचर यूज टू प्रोवाइड देम एवरीथिंग दैट दे नीडेड.
तो ऐसी जिंदगी जिन देवताओं की थी भारतवर्ष में.
सो द डेटीज हु लेड सच अ लाइफ इन इंडिया.
वो ही देवताएं आकर के अंतिम जन्म में कलयुग के अंत में आकर के दूसरों के संघ के रंग में आकर के विधर्मियों के संघ के रंग में आकर के नीचे गिर जाते.
दे देमसेल्व्स कम अंडर द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ अदर्स. In the color of the company of the Vidharmis in the last birth, at the end of the Iron Age, and they experience downfall.
Vidharmis, those in a religion opposite to the father's religion.
अब बाप कहते हैं.
Now the father says.
कि मैं आया हुआ हूँ. भले तुम सारी दुनिया के मुकाबले जास्ती पतित बन गए.
I have come even if you have become more sinful in India in comparison to the entire world.
तुम्हारे कर्म जास्ती भ्रष्ट हो गए.
योर एक्शन हैव बिकम मोर करप्ट.
दूसरे देशों में इतनी रिश्वत नहीं चलती है.
देर इज नॉट सो मच ब्राइबरी इन अदर कंट्रीज.
इतना भ्रष्टाचार नहीं चलता है. और भारतवासियों में.
देर इज नॉट मच करप्शन देर. एंड वॉट अबाउट द इंडियंस.
जबरदस्त भ्रष्टाचार.
देर इज टू मच करप्शन.
आज के देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो.
द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द कंट्री टूडे इज How will this corruption end?
बाप कहते हैं जो खुद भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचार खत्म कर ही नहीं सकते.
द फादर सेज दोज हु आर देमसेल्व्स द करप्ट वंस कैन नॉट एंड द करप्शन एट ऑल.
मैं ही जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करता हूँ. और ये भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से होती है.
When I myself come in this world, I end the corruption. And where does this corruption begin?
इस भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है देह अभिमान से.
दिस करप्शन बिगिंस विद बॉडी कॉन्शियसनेस.
देहभान होने से ही अपने को देह समझने से दूसरों को देह समझने से काम विकार की पैदाइश होती है.
इट इज ड्यू टू बॉडी कॉन्शियसनेस इट सेल्फ
because of considering ourselves to be a body, because of considering others to be a body, the vice of lust emerges.
ये है सबसे बड़ा विकार.
This is the biggest vice.
ऐसे तो पांच विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार.
As such, there are five vices: lust, anger, greed, attachment, and ego.
लेकिन सबसे बड़ा विकार है काम विकार.
But the biggest vice is lust.
काम विकार ये मुखिया है.
Lust is the chief.
जैसे डकैतों का मुखिया होता है.
Just as the dacoits, that is, members of an armed gang of robbers, have a chief.
अगर इसके ऊपर जीत पा ली तो बाकी सब भाग जाएगी.
If we gain victory over it, the remaining vices will run away.
गीता में भी कहा है, ए अर्जुन, काम और क्रोध ये तेरे महाशत्रु हैं, तू उनको जीत ले.
It has also been said in the Gita, O Arjun, lust and anger are your biggest enemies. Gain victory over them.
कौन है इस थूलिये दे दिखा दिए?
They have then shown physical wars.
अरे दो दो बातें क्यों कर दी?
अरे, why did they use double speak?
या तो काम क्रोध को जीत लो, या फिर दुर्योधन दुशासन को जीत लो.
Either gain victory over lust and anger, or gain victory over Duryodhan Dushyasan, that is, villainous characters in the epic Mahabharata.
लेकिन काम क्रोध जो है वो ही लड़ाई वास्तव में है.
But the actual fight is with lust and anger.
मनुष्य के अंदर की लड़ाई है.
It is a fight within the human being.
मनुष्य अपने अंदर की जो दुर्गुणों को अगर जीत लेता है.
If the human being gains victory over the bad traits contained in him,
कमजोरियों को जीत लेता है तो विश्व विजयी बन सकता है. इसलिए कहते भी है मन जीते जगत जीते.
If he overcomes his weaknesses, he can become the conqueror of the world. That is why it is also said, मन जीते जगत जीत. That is, if you gain victory over your mind, you gain victory over the world.
माया जीते जगत जीते.
माया जीते जगत जीत. That is, if you gain victory over माया, you gain victory over the world.
मन के हारे हार और मन के जीते
जीत. We become a loser by losing in the mind, and we become victorious by winning in the mind.
ये मन जो है वो हमको गड्ढे में ले जाता है.
This mind leads us to the pit.
तो मन कंट्रोल में करने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और भारतवासियों को खास सिखाता है.
So the Supreme Soul comes in this world to teach us to control the mind, and especially teaches the Indians
कि तुम अपने मन को कैसे कंट्रोल करो.
How they should control their mind.
क्या करो? अपन को आत्मसमझो.
What should you do? Consider yourself to be a soul.
हम ज्योति बिंदु आत्मा है, प्रकृति के मध्य में निवास करने वाला सितारा इन आँखों से देखता है.
We are points of light souls. The star which resides in the middle of the forehead observes through the eyes.
जब तक ये सितारा इस प्रकृति में मौजूद है, तब तक आंखों में से रोशनी निकल रही है.
Until this star is present in between the two eyebrows, light radiates from the eyes.
और जैसे ही वो सितारा निकल जाता है, मनुष्य मुर्दा हो जाता है और आंखें बटन हो जाती.
And as soon as that star departs, the human being becomes a corpse. That is murda, and the eyes become like buttons.
Buroshni, chali.
That light disappeared.
तो जो सितारा है आत्मा, उस सितारे की स्थिति में टिकना माना आत्मा अभिमानी बन.
So becoming constant in the stage of that soul, which is a star, means becoming soul conscious. That is आत्मा अभिमानी.
और आत्मा अभिमानी बने तो काम विकार स्वतः ही नष्ट होता है. कैसे?
And if we become soul conscious, lust is automatically destroyed. How?
हम आत्मा और तुम आत्मा.
I am a soul and you are a soul.
अब इसमें स्त्री पुरुष की बात ही नहीं गई.
Now there is no question of female and male in this at all.
स्त्री का चोला और पुरुष का चोला जब देवहान आता है तो बुद्धि में बात आती
है. The idea of female and male body comes in the intellect when we develop body consciousness.
हम जानते हैं कि आत्मा स्त्री चोला भी लेती है, आत्मा पुरुष चोला भी लेती है.
We know that a soul takes a female body as well as a male body.
Sara jeevan kaam vikar pradhan hone ki wajah se.
Due to the dominance of lust in the entire life,
manushya ant mein sharir chhodta hai to wo stri ko yaad karta hai.
When a human being, that is male, leaves the body in the end, he remembers the female or the wife.
शरीर छोड़ते समय स्त्री को याद करेगा तो अंत मते सुगते स्त्री का चूल्हा मिल जाएगा.
If he remembers the female or the wife while leaving the body, then his final thoughts lead him to his final destination and he receives a female body.
ऐसे स्त्री.
Similar is the case of a female.
सारे जीवन पुरुष को याद करती है.
She remembers the male body or the husband throughout the life.
तो अंत मते सुगते.
So her final thoughts lead her to her final destination.
पुरुष का जन्म मिल जाता है.
She receives a birth as a male.
तो ये आत्मा स्त्री या पुरुष का चूल्हा धारण करती है.
So the soul takes on a female or a male body.
वो संस्कार के अनुसार है.
That is according to the संस्कार.
लगाव के अनुसार है. अटैचमेंट के अनुसार.
As per the attachment.
अगर अटैचमेंट नहीं होगा.
If there is no attachment,
तो आत्मा आत्मिक स्टेज में रह करके परम धाम की वासी बनेगी.
The soul will remain in the soul conscious stage and become the resident of the soul world. That is param dham.
इस सृष्टि की वासी नहीं बनेगी.
It will not become the resident of this world.
सृष्टि की वासी बनती है.
When a soul becomes the resident of the world,
तो आत्मा ऊपर से आती है या तो गर्भ महल में प्रवेश करती है.
इट कम्स फ्रॉम अबाव एंड ईदर एंटर्स इन टू द पैलेस लाइक वूम
या तो गर्भ जेल में प्रवेश करती
है. और एंटर्स द जेल लाइक वूम.
द्वापर कलयुग में आएगी तो गर्भ महल में नहीं आएगी, गर्भ जेल में आएगी.
इफ इट कम्स इन द कॉपर एज एंड द आयरन एज, इट विल नॉट कम इन द पैलेस लाइक वूम, इट विल कम इन द जेल लाइक वूम.
और सतयुग त्रेता में ऊपर से आत्मा उतरती है तो गर्भ महल में आती.
एंड वेन अ सोल डिसेंड्स फ्रॉम अबाव इन द गोल्डन एज एंड द सिल्वर एज, इट कम्स इन अ पैलेस लाइक वूम.
गर्भ महल में आने पर स्त्री और पुरुष का भान होता नहीं है.
आफ्टर कमिंग इन अ पैलेस लाइक वूम, इट इज नॉट कॉन्शियस ऑफ बीइंग अ फीमेल और अ मेल.
लेकिन स्त्री पुरुष का चोला मिलता है.
हाउएवर इट रिसीव्स अ फीमेल और अ मेल बॉडी.
एक जन्म में स्त्री का चोला, एक जन्म में पुरुष का चोला.
इट रिसीव्स अ फीमेल बॉडी फॉर वन बर्थ एंड अ मेल बॉडी फॉर द नेक्स्ट बर्थ.
सत्य उत्तरेता में विभेद नहीं होता.
इन द गोल्डन एज एंड द सिल्वर एज देयर इजंट दिस वेरिएशन.
कि दो दो जन्म स्त्री के मिल जाए, दो दो जन्म पुरुष के मिल जाए.
सो दैट अ सोल वुड बी बोर्न एज अ फीमेल इन टू कॉन्सिक्यूटिव बर्थ और एज अ मेल इन टू कॉन्सिक्यूटिव बर्थ.
नहीं.
नो.
वहाँ तो समान रूप से चलता है.
It continues evenly there.
एक जन्म स्त्री का और एक जन्म पुरुष का.
That is one female birth and one male birth.
21 जन्म तक क्रम सही चलता है.
The sequence continues correctly for 21 births.
और जैसे ही दूसरे धर्म की आत्मा इस सृष्टि पर आना शुरू होती है, वैसे ही देह भान बढ़ने के कारण वो क्रम टूट जाता है.
And as soon as the souls of other religions start coming in this world, that sequence breaks due to the increase of body consciousness.
दो दो जन्म स्त्री के, दो दो जन्म पुरुष के मिलना शुरू हो जाते
हैं. A soul starts receiving two consecutive female births or two consecutive male births.
कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो क्रम टूट जाता है.
It is not necessary that it would happen so, but that sequence breaks.
तो देह भान बढ़ता है.
So body consciousness increases.
देह भान क्यों बढ़ा?
Why did body consciousness increase?
जैसे सोने में खाद मिक्स होती है.
For example, alloy mixes in gold.
सोने में चांदी मिलाई जाती है तो चांदी की खाद आ गई.
When silver was mixed with gold, the alloy of silver infiltrated it.
सोने में तांबा मिलाया गया तो तांबे की खाद आ गई.
When copper was added to gold, the alloy of copper infiltrated it.
सोने में लोहा मिलाया गया तो लोहे की खाद आ गई.
When iron was added to gold, the alloy of iron infiltrated it.
तो ऐसे ही.
So similarly,
सत्युग वाली जो आत्माएं, जो सच्ची आत्माएं थी.
The souls of the golden age who were true souls,
उनमें त्रेता युग जब शुरू होता है तो चांदी की खाद पड़ना शुरू हो जाती है. कैसे?
When the silver age begins, the alloy of silver begins to be added in them. How?
जो 14 कला संपूर्ण बनने वाली, 14 कला का संपन्न पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं.
The souls who become complete with 14 celestial degrees, the souls who make purusharth, that is spiritual effort, to become complete with up to 14 celestial degrees,
वो ऊपर से आकर के इस सृष्टि पर जन्म लेती है.
They come from above and are born in this world.
और उनके संकर रंग लगता है.
And they, that is the souls of the golden age, are colored by their company.
सत्युग में तो सिर्फ 2 करोड़ आबादी होती है.
The population in the golden age is only 2 crores, that is 20 million.
त्रेता में आके 10 करोड़ आबादी हो जाती है.
By the end of the silver age, the population reaches 10 crores, that is 100 million.
माने 4 गुनी आत्माएं ऊपर से उतरी.
It means that 4 times more souls as compared to the souls of the golden age descended from above.
और इस सृष्टि पर आकर के 4 गुनी आत्माएं जो है वो 2 करोड़ सत्यु की आत्माओं को संग रंग लगाती है.
And after descending to this world, the fourfold souls apply the color of their company to the 2 crore souls of the golden age.
तो संघ का रंग तो लगेगा ना.
So they will be colored by the company, will they not?
जो संघ का रंग लगता है उससे सृष्टि का दूषण जास्ती होता है.
More pollution of the world takes place because of the color of the company.
लेकिन त्रेता युग में इतना पतन नहीं होता जो देहभान शुरू हो जाए.
But the downfall in the silver age is not to the extent that body consciousness would begin.
देह की स्मृति आना शुरू हो जाए.
Or that the remembrance of the body would begin.
लेकिन जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है.
However, as soon as द्वापर युग begins.
द्वापर नाम क्यों रखा गया द्वापर?
द्वापर. Why has it been named as द्वापर?
दो दो मतें शुरू हो जाती है.
Two kinds of faith emerge.
इब्राहिम आते हैं वो अपनी अलग मत स्थापन करते हैं सृष्टि पर.
When Abraham comes, he establishes his separate faith after coming to this world.
भगवान ने जो मत स्थापन की थी उस मत की कोई वैल्यू नहीं रहती.
The faith established by God is not given any value.
विधर्मी धर्म पिताओं के आने की वजह से.
Due to the arrival of the Vidharmi religious fathers.
वो आकर के ऐसी मत स्थापन करते हैं जिससे मनुष्यों की पूजा बढ़ती है.
दे कम एंड एस्टेब्लिश सच अ बिलीफ सिस्टम विच इंक्रीजेस द वर्शिपिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स.
मनुष्यों को याद बढ़ती है.
विच इंक्रीजेस द सिस्टम ऑफ रिमेम्बरिंग ह्यूमन बीइंग्स.
देवताएं जो थे वो भगवान को याद करने वाले और भगवान के साकार रूप को याद करने वाले.
देवी सोल्स वर द वंस हु यूज्ड टू रिमेम्बर गॉड एंड द कॉर्पोरियल फॉर्म ऑफ गॉड.
जो भगवान को साकार स्वरूप को याद करते हैं वो जल्दी पावन बनते हैं.
Those who remember the corporeal form of God become pure quickly.
श्रेष्ठ बनते हैं, उनके आचरण भी श्रेष्ठ बनते हैं.
They become righteous. Their conduct also becomes righteous.
और जो भगवान के स्वरूप को निराकार रूप में याद करते हैं.
And those who remember God in an incorporeal form.
वो निराकारी स्टेज वाली आत्माएं.
Such souls with an incorporeal stage
क्षिप्र गति से पावन तो बन जाती हैं.
Do become pure at a fast pace.
लेकिन इतनी पावन नहीं बनती जो देवता बने.
But they do not become as pure as to become a deity.
इसलिए वो परम धामवासी बनती है.
That is why they become the dwellers of the soul world.
मुक्ति मिलती है उनको, जीवन मुक्ति नहीं मिलती.
They attain mukti, that is liberation. They do not attain jivan mukti, that is liberation in life.
जीवन मुक्ति माना?
What does जीवन मुक्ति mean?
जीवन में भी रहे.
We should be alive.
और
दुख दर्द से.
और दुख दर्दों से भी दूर रहे.
And at the same time, we should be free from sorrow and pain too.
माना आत्मा शरीर धारण करके इस सृष्टि पर रहे, सुख भोगे और दुख न भोगे.
It means that the soul should remain in this world by taking a body. It should experience happiness. And it should not experience sorrow.
तो आत्मा की चाहत क्या है?
So what is the desire of the soul?
आत्मा क्या ये चाहती है कि इस सृष्टि को हमेशा छोड़ करके हम ऐसी दुनिया में चले जाएं जहाँ न सुख हो न दुख हो न शरीर हो?
Does the soul wish to leave this world permanently and go to such a world where there is no happiness, no sorrow and no body?
Atma ka sthiti jaise lop ho gaya.
It is as if the soul became non-existent.
Aisa kaun chahega ki hamari atma hi khatam ho jaye?
Who would wish that their soul itself should perish?
Aisa to koi nahi chahta.
Nobody desires that.
Atma rahe.
The soul should remain.
Atma to ajar hamara vinashi hai.
The soul is indeed ajar, that is ever young. Amar, that is immortal. Avinashi, that is indestructible.
Lekin atma ajar hamara vinashi tab kahi jaye jab wo sharir dharan kare.
But the soul will be called ajar, amar, avinashi when it takes on a body.
Agar sharir hi nahi hai to sukh dukh bhi nahi.
If the body itself is not there, there is no happiness or sorrow either.
Phir to ye natak hi khatam ho jata hai.
Then this drama itself ends.
Are? Ye kaise ho sakta hai ki atma hamesha ke liye srishti rangmanch se chali jaye?
How is it possible that the soul departs this world stage forever?
Na sukh dhan kare na dukh dhan kare.
That it experiences neither happiness nor sorrow.
To ye to bhagwan ke liye bhi nahi kaha ja sakta.
So this cannot be said even for God.
Bhagwan ko bhi is srishti par aana padta hai.
God also has to come in this world.
Kehte bhi hai har yug mein bhagwan aata hai.
It is also said God comes in every age.
Aaj to bhagwan ko to is srishti par bandh diya.
So they bound God to come in this world.
Aur sadhu sanyasi dusron ko sikhate hain ki hum hamesha ke liye mukt ho jaye.
But the sages and sanyasis teach others we should be liberated forever.
तो हमेशा के लिए किसी की मुक्ति होती नहीं. आत्मा हमेशा के लिए सृष्टि से मुक्त हो जाए.
सो नोबडी अटेन्स लिबरेशन दैट इज मुक्ति फॉरएवर. इफ अ सोल इज लिबरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड फॉरएवर
माने आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया.
इट मीन्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल एंडेड.
तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाना ये तो संभव ही नहीं.
सो द एंड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल इज नॉट पॉसिबल एट ऑल.
जो भी आत्माएं हैं उन सब आत्माओं को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म मरण के चक्र में जरूर आना पड़ेगा.
ऑल द सोल्स आर बाउंड टू कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑन दिस वर्ल्ड स्टेज.
और जन्म मरण के चक्र में आवेंगी.
एंड इफ दे कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ
तो वो नीचे जरूर जाएंगे.
दे विल सर्टेनली एक्सपीरियंस डाउनफॉल.
क्यों?
व्हाई?
जैसे कोई बीज होता है.
फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सीड.
और बीज को बार बार बोया जाए.
एंड इफ दैट सीड इज सोन रिपीटेडली.
कोई अच्छा बीज आता है और उस बीज को बार बार बोया जाता है.
देयर इज अ गुड सीड एंड इफ दैट सीड इज सोन अगेन एंड अगेन.
तो कई बार बोलने से उसकी ताकत कम हो जाती है.
देन ड्यू टू द रिपीटेड सोइंग ऑफ द सीड इट्स पावर डिक्रीजेस.
जो पहले 20-25 दाने निकलते थे.
द वन विच यूज टू यील्ड 20-25 ग्रेन्स अर्लियर.
दूसरी बार बोने से उसमें कम दाने निकलेंगे.
इफ इट इज सोन अगेन इट विल यील्ड लेसर ग्रेन्स.
कम मोटा दाना निकलेगा.
द ग्रेन्स यील्डेड विल बी थिनर इन साइज.
उसका पौधा छोटा होने लगेगा.
इट्स प्लांट विल बी सक्सेसिवली स्मॉलर इन साइज.
तो ऐसे ही आत्मा भी एक प्रकार का बीज है.
सो सिमिलरली द सोल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सीड.
ये परमधाम से सृष्टि पर जब ये आत्मा आती है.
When this soul comes from the soul world to this world,
so powerful sharir dharan karti hai.
It takes on a powerful body.
Indriyon mein taakat zyada hoti hai.
There is more power in the organs of that body.
Sukh bhogne ki bhi taakat zyada hoti hai.
There is also more power to enjoy happiness.
Aur jaise jaise janm maran ke chakra mein aati jati hai.
And as the soul passes through the cycle of birth and death,
iski shakti kheer hoti jati hai.
Its power continues to decrease.
इंद्रियों में ताकत भी कम होती जाती है.
The power of the organs also continues to decrease.
आज से 300-400 वर्ष पहले की हिस्ट्री तो मनुष्य के पास ऐसी मौजूद है जो कोई काट नहीं सकता.
The history of the past 300-400 years available to the human beings is such that it is irrefutable.
300-400 साल पहले महाराणा प्रताप की जो तलवार है वो म्यूजियम में रखी हुई है.
द सोर्ड ऑफ महाराणा प्रताप दैट इज अ राजपूत किंग विच इज 300-400 ईयर्स ओल्ड हैज बीन केप्ट इन द म्यूजियम.
वो तलवार इतनी भारी है कि कोई साधारण आदमी उसे उठा भी नहीं सकता.
That sword is so heavy that an ordinary man cannot even lift it properly.
और वो तलवार चलाते थे.
But he, that is Maharana Pratap, used to fight with the sword.
तो कितने बड़े शरीर होते थे 400 साल पहले.
So 400 years ago, the bodies used to be so sturdy, that is balistic.
और ये सृष्टि तो 2500 साल नहीं 5000 साल पुरानी.
Well, this world is not just 2500 years old, but 5000 years old.
2000 साल की तो हिस्ट्री मिल रही है, इतिहास मिल रहा है.
The history of the past 2500 years is indeed available.
5000 साल पहले जब सतयुग बरतता था इस सृष्टि पर.
5000 years ago, when the golden age was prevalent in this world.
तब देवताओं के शरीर कितने सुडौल और सुंदर और शक्तिशाली होते होंगे.
At that time, the bodies of the deities would have been so well built, beautiful and powerful.
आज भी मंदिरों में देवताओं के जो चेहरे दिखाए जाते हैं उनमें आंखों में कितनी ललक दिखाई पड़ती है.
Even today in the faces of the deities that are depicted as idols in the temples, there is so much attraction in the eyes.
कितनी शोभा दिखाई पड़ती है.
There is so much beauty in them.
आंखें बड़ी बड़ी दिखाई जाती है.
The eyes are shown to be big.
चेहरे पर चमक दिखाई जाती है.
Radiance is depicted on the face.
और आज.
And what is it today?
आज 84 जन्म लेने के बाद क्या हुआ.
What has happened today after taking 84 births?
कलयुग के अंत में हर मनुष्य की आंख अंदर धस गई.
At the end of the Iron Age, the eyes of every human being has sunken inside.
क्यों धस गई अंदर.
Why have they sunken inside?
क्योंकि आत्मा में ताकत ही ताकत नहीं गई.
It is because there is no power left at all in the soul.
तो अब ये आत्मा रूपी जो बैटरी है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए जनरेटर चाहिए.
So now a generator is required to charge this soul like battery.
वो जनरेटर है परमपिता परमात्मा से.
That generator is the Supreme Father. सुप्रीम सोल शिवा.
वो इस सृष्टि पर जब आता है तो कोई साकार तन में प्रवेश करता है.
When he comes in this world, he enters into some corporeal body.
जिस साकार तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है उस तन को पहचानना.
To recognize the corporeal body in which he enters in a permanent way and through which he is revealed in this world.
ये सब आत्माओं के बस की बात नहीं.
It's not within the capacity of all the souls.
दूसरे धर्म की आत्माएं जल्दी नहीं पहचानेंगी.
The souls belonging to other religions will not recognize him quickly.
कौन पहचानेंगे.
Who will recognize him?
जो असल सूर्यवंशी आत्माएं होंगी.
The souls who are truly Suryavanshi, that is those of the Sun dynasty.
जो सृष्टि के आदि में आई होंगी.
The ones who would have come in the beginning of the world.
एकदम 84 जन्म लेने वाली आत्माएं.
The souls who take the full 84 births.
वो आत्मा पहले पहचान.
Will recognize him first.
वो सूर्यवंशी है.
They belong to the Sun dynasty.
गीता में भी लिखा हुआ है भगवान जब आते हैं तो सबसे पहले सूर्य को ज्ञान सुनाते हैं.
It has also been written in the Gita, when God comes, he narrates the knowledge to the sun first.
तो सूर्य जब ज्ञान सुनेगा भगवान से.
So when the sun listens to the knowledge from God.
तो वो किसको सुनाएगा.
Whom will he narrate it to?
इब्राहिम के बच्चों को सुनाएगा.
Will he narrate it to the children of Abraham?
किसको सुनाएगा.
Whom will he narrate it to?
अपने बच्चों.
सूर्य अपने बच्चों को पहले सुनाएगा.
The sun will narrate the knowledge to his children first.
तो सूर्यवंशी बच्चे जो है वो पहले पहले इस ज्ञान को सुनते हैं.
So the children belonging to the sun dynasty listen to this knowledge first of all.
और जो सुनते हैं उनमें फिर नंबरिंग बनती है.
And then those who listen to the knowledge are numbered according to their purusharth.
वो फिर 108 रुद्रमाला के बढ़ के संसार में प्रत्यक्ष होते हैं.
Those 108 beads of the rosary of Rudra, that is Rudramala, are then revealed in the world.
Mala pehle Rudra ki mala taiyar hoti.
First, the rosary of Rudra becomes ready.
Taiyar to hoti hai.
It does become ready.
Lekin wo atmaye aisi atmaye hai jo janm janmantar rajai prapt karne wali atmaye.
but those souls are such souls that they attain a kingship for many births.
Satyuga mein bhi, Treta mein bhi, Dwapar mein bhi, Kali Yuga mein bhi.
They attain a kingship in the golden age as well as the silver age, in the copper age as well as the iron age.
Har yuga mein janm janmantar raja hi prapt ki hai.
They have achieved the kingship for many births in every age.
Kisi ne kam, kisi ne jyada.
Some have achieved it to a lesser extent and some have achieved it to a greater extent.
Koi aisi bhi hoti hai ki koi janm mein raja nahi banti.
There are such souls also who do not become kings in any birth.
Lekin prince princess ban ke reh jati hai.
But remain as prince and princess.
Rajkumar rajkumari ban ke reh jati
hai. They remain as prince and princess.
Jaise koi raja ko char bacche paida hue.
Suppose four children are born to a king.
To ek hi to gaddi pe baithega.
So only one would ascend the throne.
Ki charon gaddi pe baith jayenge.
Or would all the four of them ascend the throne?
एक गद्दी पे बैठता है बाकी तीन राजकुमार हो जाते हैं.
वन ऑफ देम असेंड्स द थ्रोन एंड द रिमेनिंग थ्री बिकम प्रिंसेस.
तो राजकुमारी की पोजीशन तो मिलती है.
सो दे अटेन एट लीस्ट द पोजीशन ऑफ अ प्रिंस.
तो भी तो पोजीशन तो ऊंची हुई ना.
इवन सो द पोजीशन इज हाई इजंट इट.
प्रजा में जो और साधारण साहूकार है और जो बड़े बड़े होदेदार है और जो अधिकारी हैं उनके मुकाबले उनका मर्तबा तो ज्यादा होता है.
देयर पोजिशन इज हायर वेन कम्पेयर टू द अदर ऑर्डिनरीली रिच पीपल एंड द पीपल होल्डिंग बिग पोस्ट एंड द ऑफिसर्स अमंग द सब्जेक्ट्स.
तो कहने का मतलब ये पढ़ाई के ऊपर आधारित है.
सो द पर्पस ऑफ सेइंग दिस इज दैट इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी.
और पढ़ाई है खास किस प्रैक्टिस की.
And the study is especially in respect to the practice of what?
Atmiki.
The practice of soul consciousness.
सवेरे उठ करके जितना हम आत्मा की याद में अपने foundation पक्का डाल लेंगे.
After waking up in the morning, the more we lay a strong foundation in the remembrance of the soul.
सारा दिन वो आत्म की स्थिति मजबूत बनी रहेगी. जैसे अभी संगम युग है.
फॉर एग्जाम्पल इट इज द कॉन्फ्लुएंस एज नाउ.
संगम युग में जो आत्माएं जितना ज्यादा आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करती है.
विच एवर सोल प्रैक्टिसेस मोर टू रिमेन इन सोल कॉन्शियस स्टेज इन द कॉन्फ्लुएंस एज.
जन्म जन्मांतर वो उतनी ज्यादा आत्मिक स्थिति में रहेंगी.
द मोर दे विल रिमेन इन द सोल कॉन्शियस स्टेज बर्थ आफ्टर बर्थ.
ज्यादा आत्मिक स्थिति में रहेंगी तो दूसरे धर्म की जो आत्माएं ऊपर से आती है वो प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी.
If they remain in soul conscious stage more, the souls of the other religions who come from above will not be able to enter into them at all.
और बार बार यहाँ देह बहन में आएंगी.
And if they become body conscious repeatedly here,
देह के आकर्षण में आएंगी.
If they are attracted by the body,
तो आत्मा की ताकत कम होती जाएगी.
Then the power of the soul will continue to decrease.
आत्मा की ताकत कम होने से क्या होगा.
What will happen as a result of the decrease in the power of the soul?
द्वापर युग से दूसरे धर्म की आत्माएं आती हैं, वो प्रवेश कर जाएंगी.
The souls of the other religions who come from above since the copper age will enter into them.
अभी भी भूत प्रेत आत्माएं किस में प्रवेश करती है.
Even now, in whom do the souls of ghosts and spirits enter?
कमजोर में या पावरफुल में.
Do they enter in the weak ones or the powerful ones?
जो कमजोर आत्माएं होती है उनमें भूत प्रवेश कर जाते हैं.
The ghosts and spirits enter into the weak souls.
तो इसलिए बाबा का जो ज्ञान है वो ये सिखाता है कि हमारे ऊपर कोई अधिकार न कर सके.
That is why Baba's knowledge teaches us that nobody should be able to dominate us.
क्या?
What?
ऐसा ज्ञान देता है कि हमारे ऊपर कोई अधिकार न कर सके. हम दूसरों ऊपर अधिकार भले करें.
He gives such knowledge that nobody should be able to dominate us, though we may dominate others.
सत्युग त्रेता में अधिकार करने की बात नहीं.
There is no question of domination in the golden and the silver ages.
कहाँ?
It is about when?
द्वापर कलयुग.
It is about the copper age and the iron age.
लेकिन दूसरे हमारे ऊपर अधिकार न जमा पाए.
But others should not be able to dominate us.
जैसे महाराणा प्रताप हुए.
फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज महाराणा प्रताप.
उस समय अकबर का राज्य था.
एट दैट टाइम देयर वॉज द रूल ऑफ अकबर.
सारी इंडिया में वो तो सम्राट था.
He was an emperor of the entire India.
लेकिन उन्होंने उसकी आधीनता स्वीकार नहीं की.
But he, that is Maharana Pratap, did not accept being his, that is Akbar's subject.
कौन सी ताकत थी?
What was the power behind it?
वो तो एक चित्तौड़ छोटा सा राज्य उसके राजा थे.
He was the king of a small kingdom of Chittor.
और सम्राट अकबर तो सारे देश का राजा था.
But Emperor Akbar was the ruler of the entire country.
इतने बड़े सम्राट के सामने उनकी ताकत क्या बड़ी हुई? कुछ ज्यादा ताकत थी.
What was his power in comparison to such a big emperor? Did he have more power?
लेकिन फिर भी.
However.
अंजाम क्या हुआ?
What was the result?
महाराणा प्रताप ने कभी भी उनकी आधीनता स्वीकार नहीं.
महाराणा प्रताप never accepted being his subject.
ये शक्ति कहाँ से भरी?
So when did he feel this power in him?
जी संगम में शक्ति भरी आत्मा.
The soul felt this power in itself in the confluence age.
ऐसे शिवाजी.
सिमिलर वॉज द केस ऑफ शिवाजी.
कहाँ शिवाजी के पिताजी छोटे से अहुदेदार.
शिवाजी फादर वॉज अ स्मॉल ऑफिसर.
उनके घर में शिवाजी पैदा हुए.
शिवाजी वॉज बोर्न इन हिज हाउस होल्ड.
औरंगजेब तो सारे भारत का सम्राट.
वाइल औरंगजेब वॉज द एम्परर ऑफ द एंटायर इंडिया.
शिवाजी ने उनकी आधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की.
शिवाजी नेवर एक्सेप्टेड बीइंग हिज सब्जेक्ट.
एक बार जंबे में फंस भी गए.
He was even entrapped in his clutches once.
तो कोई न कोई युक्ति बना करके और निकल गए.
But he adopted some or other tactic and escaped.
हिम्मत नहीं हारी.
He did not lose courage.
माना हिम्मत जो करता है शिव बाबा उसको मदद जरूर देते.
It means that Shiv Baba definitely helps the one who shows courage.
अभी भी मदद दे रहा है. अभी तो संगम युग में प्रैक्टिकल में आया हुआ है.
Even now he is giving help. Now he has practically come in the confluence age.
तो जो जितनी हिम्मत करेंगे उनको उतनी मदद शिव बाबा से मिलती है.
So the more someone shows courage, the more help they will keep receiving from Shiv Baba.
अभी किस बात की हिम्मत सबसे जास्ती करनी है?
In what thing do we have to show maximum courage now?
Seva. Seva ki himmat.
Someone said in service.
सबसे जास्ती हिम्मत करनी है पहले अपनी सेवा करनी.
We must show the maximum courage in doing the service of the self first.
फिर जो भी संगी साथी मिले, जो भी संसर्ग संपर्क में आने वाली, संबंध में आने वाली आत्माएं हैं, उनकी सेवा करने की हिम्मत मिले.
Then we should show courage in serving all the companions we meet, all the souls who come in our contact and connection and relationship.
हम उनकी disservice न करें.
We should not do disservice to them.
क्या करें?
What should we do?
उनकी सेवा करें.
We should serve them.
वो भले हमारे लिए कुछ भी करें.
They may treat us in any manner.
गालियां दें.
They may hurl abuses at us.
Blaming करें.
They may criticize us.
लेकिन हम
बट वी
हम उनकी सेवा करें.
वी शुड सर्व देम.
अगर ऐसी सेवा करने की हिम्मत हमारे अंदर जागती रही.
इफ द करेज टू डू सच सर्विस कंटिन्यूज टू अराइज इन अस.
तो हम बाप के हिम्मतवान बच्चे कहे जाए.
वी विल बी कॉल्ड द करेजियस चिल्ड्रन ऑफ द फादर.
क्या?
व्हाट?
हिम्मते बच्चे मददे बाप जरूर मदद करेगा.
हिम्मते बच्चे मददे बाप. इफ द चिल्ड्रन डिस्प्ले करेज the father will certainly help.
Sara vishu ek taraf.
Even if the entire world moves on one side.
Aur ek atma ek taraf bhi ho jaye.
And one soul is on other side.
To bhi baap usko madad karne ke liye bandha hua hai.
The father is bound to help him.
Kahan 5 pandav duniya aur kahan 500 700 crore manushya atma hai.
What a comparison between the world of the 5 Pandavas and 500 to 700 crore, that is 5 to 7 billion human souls.
Sari Kaurav aur Yadav.
All are Kauravas, that is descendants of Kuru, and Yadavas, that is descendants of Yadu.
Aur sare hi dushman.
Moreover, all of them are enemies of the Pandavas.
कोई बाहर की दुनिया के तरीके से दुश्मन,
सम आर एनिमीज फ्रॉम द एंगल ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड,
कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर के दुश्मन,
सम आर एनिमीज इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्म कुमार कुमारी,
और कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर के भी दुश्मन हो जाते हैं,
एंड सम बिकम एनिमीज इवन आफ्टर बिकमिंग प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी,
माने सारी ही दुनिया दुश्मन हो जाती है,
इट मीन्स दैट द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स एन एनिमी,
तो भी वो हिम्मत नहीं हारते,
इवन सो दे डू नॉट लूज करेज,
जैसे बाप ने श्रीमत दी है उस श्रीमत पर चलना है और श्रीमत पर चल करके आत्माभिमानी बनकर के रहना,
देयर थिंकिंग इज वी हैव टू फॉलो द श्रीमत द फादर हैज गिवन अस एंड व्हाइल फॉलोइंग द श्रीमत वी हैव टू रिमेन सोल कॉन्शियस,
न दुख देना है न दुख लेना है,
वी शुड नीदर गिव सोरो नॉर एक्सेप्ट सोरो,
दूसरों को देना है तो क्या देना है, सुख देना है,
इफ समथिंग इज टू बी गिवन टू अदर्स व्हाट शुड वी गिव, वी हैव टू गिव हैप्पीनेस,
ऐसा ज्ञान कभी न सुना है कि दूसरे को दुख हो जाए,
वी शुड नेवर नरेज सच नॉलेज दैट मेक्स अदर्स अनहैप्पी,
कभी कभी क्या होता है कि अहंकार में आकर के,
समटाइम्स इट हैपेंस दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईगो,
ज्ञान तो सुनाते हैं,
वी डू नरेज नॉलेज,
लेकिन ऐसा ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिससे दूसरी आत्मा अगर उठने वाली हो तो भी और ही गिर जाए,
बट वी नरेज सच नॉलेज that even if a soul was going to rise spiritually, it will fall further.
हाथ जोड़ ले, हमें नहीं चाहिए ये ज्ञान.
He may join hands saying, we don't require this knowledge.
नफरत ही पैदा हो जाए.
Instead, he may develop hatred for the knowledge.
तो वो disservice नहीं करना चाहिए.
So, we should not do that disservice.
Disservice माना कोई आत्मा को उमंग उत्साह में लाने की बजाय और ही उसको down कर देना.
This service means, instead of bringing zeal and enthusiasm in a soul, to pull it further down. That is discourage.
Service karna, mana umang utsah mein lana. Khud bhi umang utsah mein rehna, dusron ko bhi umang utsah mein lana.
Doing service means to create zeal and enthusiasm. Remaining in zeal and enthusiasm ourselves, as well as creating zeal and enthusiasm in others.
वो सर्विस दूसरों की तब कर सकेंगे जब पहले हम खुद आत्माभिमानी बनने की हिम्मत करें,
वी विल बी एबल टू डू सच सर्विस ऑफ अदर्स व्हेन वी आवरसेल्फ शो द करेज टू बिकम सोल कॉन्शियस,
ये बहुत बड़ी तपस्या है, क्या
दिस इज अ वेरी बिग तपस्या दैट इज इंटेंस मेडिटेशन, व्हाट
वो ऋषि मुनि सन्यासी जो टांग ऊपर कर देते हैं, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं,
समवन सेड बिकमिंग सोल कॉन्शियस those holy men and sannyasis simply raise their legs upwards, they stand on one leg,
पांव के पंजे पे खड़े हो जाते हैं,
and stand on the toes,
हाथ ऊपर कर देते हैं, हाथ ऊपर किए खड़े रहते हैं,
they raise their hands, they keep standing with their hands raised above,
तो वो समझते हैं ये तपस्या है, खाना नहीं खाते हैं,
so they think this is tapasya, they do not eat food,
इसे तपस्या समझते हैं,
दे कंसिडर इट टू बी तपस्या,
बाप कहते हैं वो कोई तपस्या नहीं है,
द फादर सेज दिस इज नॉट तपस्या,
ये तो देह को दुख दिया,
दिस इज गिविंग सोरो टू द बॉडी,
क्या
वॉट
जीवघात कर रहे हैं,
दे आर कमिटिंग सुइसाइड,
बाप आकर के जीवघात नहीं सिखाते, भूखा रहना नहीं सिखाते,
द फादर डज नॉट टीच टू कमिट सुइसाइड व्हेन ही कम्स, ही डज नॉट टीच टू रिमेन हंग्री,
कोई तकलीफ नहीं देते,
He does not give any trouble.
क्या कहते हैं?
What does he say?
सिर्फ
He says just.
सिर्फ क्या करो?
Just do what?
आत्मा को याद करो.
Just remember the soul.
दूसरे को देखते हो तो भी आत्मा बिंदी याद आए.
Even if you look at others, you should remember the point soul.
क्या?
What?
चेहरा देखने में आएगा.
The face will be visible.
लेकिन साथ साथ हाँ वो बिंदी सितारा जरूर याद आए.
But along with it, the point. That is bindi. The star should certainly come to the mind.
चाहे किसकी माथे पे बिंदी या टीका लगा हुआ हो या न लगा हुआ हो.
Whether the bindi, that is a dot, or the tika, that is a vermilion mark, is applied on someone's forehead or not.
लेकिन हमको क्या याद आना चाहिए?
What should we remember? Someone said, we should feel as if it is applied.
कि हमको दिखाई पड़ेगी ये सफेद सफेद सितारा इसकी भक्ति में चमक रहा है.
यस इट शुड बी विजिबल टू अस. द व्हाइट स्टार इज शाइनिंग बिटवीन द टू आईब्रोज.
तो अगर ऐसी प्रैक्टिस डाल ली
सो इफ यू हैव डेवलप दिस प्रैक्टिस
तो जैसे कि हम आत्मा
इट इज एज इफ वी आर सोल कॉन्शियस.
चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते
वाइल मूविंग वाइल स्टैंडिंग और सिटिंग वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग
कोई गाली दे रहा है तो भी
इवन इफ समवन इज हर्लिंग अब्यूसेस एट अस
कोई गाली कर रहा है तो भी
इवन इफ समवन इज क्रिटिसाइजिंग अस
हम उसको किस रूप में देंगे आत्मिक.
इन विच फॉर्म शुड बी ऑब्जर्व हिम. इन द फॉर्म ऑफ अ सोल.
जब आत्मिक रूप में देखेंगे तो आत्मा आत्मा भाई भाई हो जाएगा.
वेन वी ऑब्जर्व समवन इन द फॉर्म ऑफ अ सोल देन इट विल बी आत्मा आत्मा भाई भाई दैट इज ऑल द सोल्स आर ब्रदर्स.
वो भी परमात्मा का बच्चा हम भी परमात्मा के बच्चे.
ही इज द चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम सोल एज वेल एज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सुप्रीम सोल.
वो थोड़ा ज्यादा तमो प्रधान अंदर से समझेंगे.
ही इज अ लिटिल मोर तमो प्रधान दैट इज डोमिनेटेड बाई डार्कनेस और इग्नोरेंस. वी विल अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम विदिन.
क्या समझेंगे
वॉट विल बी थिंक.
ये ग्लानी कर रहा है गाली दे रहा है तो ये ज्यादा तमो प्रधान बन गया है.
ही इज क्रिटिसाइजिंग हर्लिंग अब्यूज सो ही हैज बिकम मोर तमो प्रधान.
और हम थोड़ा बह रहे हैं हमारे ऊपर बाप की इसलिए हम अपने को कंट्रोल किए हुए हैं.
एंड एज रिगार्ड्स अस सिंस द फादर इज मर्सीफुल अपॉन अस दैट इज वाई वी हैव कंट्रोल्ड अवर सेल्स.
रहम आना चाहिए.
वी शुड फील मर्सी.
ये आत्मा नीचे गिर रही है इस आत्मा को भी ऊपर उठा.
एंड थिंक दिस सोल इज एक्सपीरियंसिंग डाउनफॉल. वी मस्ट अपलिफ्ट दिस सोल ऑल्सो.
तो जब हम ऐसे लगातार वाइब्रेशन बनाएंगे तो हमारे वाइब्रेशन का दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा.
सो व्हेन वी क्रिएट सच वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली आवर वाइब्रेशन विल हैव एन इफेक्ट ऑन अदर्स.
इसलिए बताया
दैट इज वाई इट हैज बीन मेंशन्ड
कि जब विनाश होगा उस समय कोई तलवार लेकर के या बंदूक लेकर के भी हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ जाएगा.
व्हेन द डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस एट दैट टाइम इवन इफ समवन कम्स टू अटैक अस विद अ सॉर्ड और अ गन
या बिल्कुल मारने के ऊपर ही आमादा हो जाएगा.
व्हाट इवन इफ ही इंटेंड्स टू किल अस कम्प्लीटली
तो भी हमारी आत्मिक स्थिति के आधार पर उसको भयंकर साक्षात्कार होगा.
ही विल हैव अ फ्राइटनिंग विजन अकॉर्डिंग टू अवर सोल कॉन्शियस स्टेज.
अब भाग खड़ा होगा.
एंड ही विल रन अगेन.
कुरान में भी लिखा है.
इट हैज ऑल्सो बीन रिटन इन द कुरान दैट इज द होली बुक ऑफ द पीपल ऑफ इस्लाम.
जब कयामत होती है तो खुदा के बंदे बहुत मौज में रहते हैं.
व्हेन कयामत दैट इज डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस द पीपल ऑफ गॉड लिव इन ग्रेट जॉय.
उनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आती है तकलीफ उनको महसूस नहीं होती.
दे डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी दे डू नॉट फील एनी डिफिकल्टी.
तो बंदे कब कहे जाएंगे.
व्हेन विल दे बी कॉल्ड बंदे दैट इज पीपल.
जब देवान में रहना बंद करे.
इट इज व्हेन दे स्टॉप बीइंग बॉडी कॉन्शियस.
क्या
व्हाट
देवान में रहना बंद करे तो खुदा के बंदे.
व्हेन दे स्टॉप बीइंग बॉडी कॉन्शियस दे आर द पीपल ऑफ गॉड.
और देवान अगर आता रहता है तो.
एंड इफ बॉडी कॉन्शियसनेस कीप्स इमर्जिंग
तो कहेंगे अभी खुदा के बंदे नहीं है.
इट विल बी सेड दैट दे आर नॉट द पीपल ऑफ गॉड येट.
गंदे है.
दे आर गंदे दैट इज डर्टी.
तो सुबह से लेकर के शाम तक ये प्रैक्टिस करें पक्की पक्की. क्या
सो वी शुड प्रैक्टिस दिस स्ट्रांगली फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. व्हाट
कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है.
वी शुड प्रैक्टिस दैट वी आर पॉइंट्स ऑफ लाइफ सोल.
और दूसरी भी आत्माएं जो जरूरी मिलती है जुलती है संपर्क संबंध में आती है उनको भी हम क्या देखें.
एंड दी अदर सोल्स ऑल्सो हु मीट अस हु कम इन आवर कॉन्टेक्ट और रिलेशनशिप हाउ शुड वी सी देम एज वेल.
ज्योति बिंदु आत्मा
वी शुड ऑब्जर्व देम इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ लाइफ सोल्स.
अगर ये प्रैक्टिस पक्की पड़ेगी तो शर्त यह है कि आत्मा को परमात्मा जरूर याद आवेगा.
इफ दिस प्रैक्टिस बिकम स्ट्रांग इट इज सर्टेन दैट द सोल विल डेफिनेटली रिमेम्बर द सुप्रीम सोल.
क्या
व्हाट
आत्मा बच्चा बने और बच्चा आत्मा को परमात्मा बाप याद ना आए ये हो नहीं सकता.
it cannot be possible that if a soul becomes a child and that soul-like child does not remember the Supreme Soul Father.
जहाँ जहाँ आत्म स्वरूप होगा वहाँ परमात्मा साथ साथ रहेगा.
Wherever there is a soul conscious form, the Supreme Soul will be there along with the soul.
और जहाँ देवान होगा.
And where there is body consciousness,
जहाँ पाप हो.
There is sin.
देवान से ही पाप पैदा होते हैं ना.
Sins are born out of body consciousness only, aren't they?
वो जो भी पाप बनते हैं वो कैसे बनते हैं.
How are all the sins created?
देवान से बनते हैं.
They are created by body consciousness.
अपने को आत्मा नहीं समझा.
If you don't consider yourself to be a soul,
देह समझा तो स्त्री पुरुष दिखाई देगा.
If you think yourself to be a body, you will observe others as females and males.
स्त्री पुरुष दिखाई देगा तो काम विकार पैदा हो जाएगा.
If you observe others as females and males, the vice of lust will emerge.
ऐसे ही क्रोध.
Similar is the case of anger.
अपने को आत्मा नहीं समझेंगे.
If you do not consider yourself to be a soul,
तो दूसरा कहीं बेगर वो क्या नाम भिखारी दिखाई देगा.
Then the other person will appear to you as a beggar.
कमजोर दिखाई देगा.
A weak one.
चमार दिखाई देगा. भंगी दिखाई देगा.
A chamar, that is a leather worker. A bhangi, that is a sweeper.
नीच जात दिखाई देगा.
A person belonging to a low caste.
तो उसके ऊपर क्रोध आएगा. हैं? हम ऊंची जाति के.
So you will be angry with him, thinking, hey, we belong to the upper caste.
हम इतने बड़े आदमी, हम धनवान के बच्चे.
We are such important people. We are children of prosperous ones.
तो दूसरे ऊपर क्रोध आएगा.
So you will be angry on others.
अगर आत्मा आत्मा देखेंगे.
If you observe others as souls,
तो कोई क्रोध किसी के ऊपर नहीं आएगा.
Then you will not be angry at anyone.
ऐसे लोग.
Similar is the case with greed.
लोभ कब आता है.
When do you develop greed?
हैं? मैंने कमाया.
When you think, I have earned.
मेरे शरीर ने कमाया. मैंने अपने शरीर से ये धन कमाया.
My body has earned. I have earned this money through my body.
ये धन मेरा है.
This wealth belongs to me.
तो देह वो लोभ आ जाता है. तो इसको बैंक बैलेंस इकट्ठा करे.
Thus, greed emerges with a thought, let me collect this as a good bank balance.
जो बच्चे हैं, वो खाते रहेंगे जन्म जन्मांतर.
My children will live out of it for many births.
तो जन्म जन्मांतर बच्चों के लिए धन इकट्ठा किया.
So you collected wealth for the children for many births.
ये देहदारियों के लिए इकट्ठा किया ना.
You collected this wealth for the bodily beings, didn't you?
वो बच्चे आज इस जन्म में बच्चे हैं, अगले जन्म में हमारे दुश्मन बनेंगे. क्या बनेंगे कुछ पता है.
Those children are your children in this birth. Do you know whether those children will be your enemies or something else in the next birth?
कुछ पता नहीं.
You don't know anything.
तो लोभ जो है उसका भी मूल क्या हुआ.
So what is the root cause for greed as well?
देह अभिमान.
Body consciousness.
चाहे देह अपनी है.
Whether it is our body.
अपनी देह के लिए और चाहे दूसरों की देह के लिए धन का लोभ किया.
We developed greed for wealth, either for our body or for others' bodies.
खाने पीने की चीजों का लोभ किया.
If we developed greed for eatables or for drinks.
तो वो लोभ का मूल जो है वो देह अभिमान होता है.
The root cause for that greed is body consciousness.
आत्मा समझेंगे.
If we consider ourselves to be a soul,
तो वो देहभान लोभ का पैदा नहीं होगा.
The body consciousness which gives rise to greed would not emerge.
ऐसे वो.
Similar is the case with attachment.
मेरा बच्चा.
This is my child.
ये इसका बच्चा.
This is her child.
माताओं में ज्यादा होता है.
It is seen more among mothers.
मेरा बच्चा. मेरे को क्या ऐसे देखा.
My child. Why did she see my son like this?
मेरे से मेरे बच्चे से ऐसे क्यों कहा.
Why did she say so to my child?
ये तो तेरा बच्चा है.
This is your child.
जैसे सौतन सौतन में झगड़ा होता है ना.
Just as a fight takes place between a wife and a co-wife, doesn't it?
ऐसे झगड़ा हो जाता है.
A similar fight takes place between the mothers.
तो ये जो मोह है उसका भी मूल क्या हुआ.
So what is the root cause for this attachment also?
मेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा और तेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा.
A child born from my womb
and a child born from your womb.
Uska bachcha aur mera bachcha.
Her child and my child.
Chahe Christian se paida hua ho.
Whether it is a child born from Christians.
Christian se paida hua, wo bhi bachcha. Aur Hinduon se paida hua, wo bhi bachcha.
A child born from Christians as well as a child born from Hindus is a child.
Christians ko kyon nahi chhute?
Why don't they touch Christians?
Christians ko ghar mein rakhne se nafrat kyon karte? Muslimano ko nafrat kyon karte? Hai?
Why do they hate to keep Christians in their house? Why do they hate Muslims?
Chamaron ko nafrat kyon karte?
Why do they hate the chamars? That is low caste Hindus who prepare leather products.
जो भंगी है उनको नफरत क्यों करते
हैं?
Why do they hate the bhangis? Someone said they lift garbage.
गंदा उठाते खराब काम करते हैं क्या?
They lift garbage. So do they do any bad work?
माँ भी तो गंदा उठाती है.
A mother also lifts dirt. That is pieces of her baby.
माँ की नामौजूदगी में बाप भी तो गंदा उठाता है.
In the absence of the mother. A father also lifts dirt, that is pieces of baby.
तो एक का उठाता हो तो अनेकों का उठाते हैं.
ठीक है, हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे.
Someone said he lifts the dirt of one, but they lift the dirt of many. Yes, it is okay. We will become world benefactors, that is विश्व कल्याणकारी.
विश्व कल्याणकारी बनेंगे. तो जो विश्व कल्याणकारी बनेंगे वो अच्छे या एक के कल्याणकारी बनेंगे वो अच्छे?
We will become world benefactors. So, are those who become world benefactors good or are those who become the benefactors of one good? Everyone said, world benefactors.
Vishu kalyanakari kanenge to, Vishu ke baap kahe jayenge.
If we become world benefactors, we will be called the father of the world.
Suryavanshi banenge.
We will become Suryavanshi, that is, belonging to the Sun dynasty.
Aur ek ka kalyan karenge? तो फिर संकुचित बुद्धि हो गई.
एंड इफ यू ब्रिंग अबाउट बेनिफिट टू जस्ट वन इट इज अनलिमिटेड इंटेलेक्ट.
तो जो भी विकार पैदा होते अहंकार ही है.
सो वॉट एवर वाइसेस इमर्ज ईगो फॉर एग्जाम्पल.
अहंकार जो है वो भी देहभान से पैदा होता है.
ईगो ऑल्सो इमर्जेस फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस.
तो सब बातों की एक ही दवा हो गई.
सो The medicine for all things is the same.
क्या?
What?
अपन को और दूसरों को आत्मा समझ करके देखना.
To observe ourselves as well as the others as souls.
आत्मा न देखने के कारण दुनिया भर की झंझटें संसार में पैदा हो गई.
Because of not observing the other as a soul, all kinds of problems have emerged in the world.
दुनिया भर के दुख व्याप्त हो गए.
All kinds of sorrow have become widespread.
तो शुरुआत कहाँ से करें?
So, where should we begin from?
हैं? अपने को पहले आत्मा बनाएं कि पहले अपने बच्चे को बनाएं?
Should we make ourselves a soul first, or should we make our child a soul first? Someone said we should make ourselves a soul first.
बच्चे हैं, पत्नी है, उनके ऊपर चढ़ बैठे पहले. तू आत्मा अभिमानी बन.
Should we force our children, our wife first and say, become soul conscious?
नहीं.
No.
शुरुआत कहाँ से हो?
अपने
से.
Where should we begin from? We should begin with ourselves.
अपना सुधार किया तो परिवार सुधरेगा.
If we have reformed ourselves, the family will reform.
अपना सुधार किया नहीं तो परिवार कभी भी सुधर नहीं सकता.
If we have not reformed ourselves, The family can never reform.
परिवार का अपने घर का सुधार नहीं किया तो दुनिया का सुधार कभी हो नहीं सकता.
If we have not reformed our family, our house, the reformation of the world can never take place.
कोई कोई ऐसे भी होते हैं ज्ञान अपने घर वालों को नहीं सुनाए.
There are such ones also who will not narrate the knowledge to their family members.
है हमारी बदनामी हो जाएगी.
They say, hey, our reputation will become bad.
लड़की ज्ञान में चलने लग पड़ेगी तो बदनामी हो जाएगी.
If the daughter starts following the knowledge, our reputation will become bad.
लड़की को शादी नहीं करता है.
Others will say, look, he doesn't get his daughter married.
ये नहीं करता तो अपने बाल बच्चों को ज्ञान नहीं देंगे, क्या करेंगे?
He does not do this, so they will not give knowledge to their children. What will they do?
दूसरों को ज्ञान देंगे.
They will give knowledge to others.
खुद स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करेंगे, अपने बाल बच्चों को नरक में ढकेलेंगे.
They themselves will make purusharth, that is spiritual effort, to go to heaven and push their children into hell.
तो उनको क्या कहेंगे?
So what will be said about them?
ये परिवर्तन कर पाएंगे?
Will they be able to bring about transformation?
ये अपना भी परिवर्तन नहीं कर सकते और दुनिया का भी परिवर्तन नहीं कर सकते.
They can neither bring about transformation of the self nor the transformation of the world.
तो आत्मा बनना, आत्मिक स्थिति में अपने को देखना, ये पहली सीढ़ी है पुरुषार्थ की.
सो बिकमिंग अ सोल, लुकिंग एट अवर सेल्फ इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पुरुषार्थ.
उसके बाद?
देयर आफ्टर.
उसके बाद कौन सी सीढ़ी?
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप?
है दूसरी सीढ़ी कौन सी?
विच इज द सेकेंड स्टेप?
परमात्मा बाप को याद करना.
टू रिमेम्बर द सुप्रीम सोल फादर.
बाप को याद तभी कर सकेंगे जब ज्ञान लेंगे.
वी विल बी एबल टू रिमेम्बर द फादर ओनली वेन वी टेक नॉलेज.
क्या?
वॉट?
ज्ञान अगर लेंगे नहीं, ज्ञान में रस होगा नहीं, तो बाप की पहचान बाप की पहचान नहीं हो पाएगी.
इफ यू डू नॉट टेक नॉलेज, इफ देर इज नो इंटरेस्ट इन नॉलेज, वी विल नॉट बी एबल टू रिकोगनाइज द फादर.
क्योंकि बाप जो है वो असली रूप में तो बिंदु है.
बिकॉज इन हिज ट्रू फॉर्म द फादर इज अ पॉइंट शिव.
शिव ज्योति बिंदु बाप है ना.
शिव द पॉइंट ऑफ लाइट इज द फादर इजंट ही.
कि कोई देहधारी बाप है?
और इज एनी बॉडीली बींग द फादर?
वो तो हमें पता ही नहीं है.
वी डू नॉट नो अबाउट दैट वन एट ऑल.
इतनी बड़ी दुनिया में कैसे पता चले कि राम बाप कौन है?
इन सच अ बिग वर्ल्ड हाउ विल वी नो हु द फादर राम?
और सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला पत्ता, पहला बच्चा कृष्ण कौन है?
एंड हु द फर्स्ट लीव, द फर्स्ट चाइल्ड कृष्णा ऑफ दिस वर्ल्ड स्टेज इज?
हमें कैसे पता चलेगा?
हाउ विल वी कम टू नो?
पता चलेगा क्या?
विल वी कम टू नो?
नहीं.
नो.
वो तो ज्ञान में जब हम घुसेंगे तब हम जान सकते हैं.
इट इज व्हेन वी एंटर इनटू द नॉलेज वी विल कम टू नो.
तो ज्ञान जो है वो कैसे मिलेगा?
सो हाउ विल वी ऑब्टेन द नॉलेज?
ज्ञान माने जानकारी.
नॉलेज मीन्स इन्फॉर्मेशन.
वो जानकारी कैसे मिलेगी?
हाउ विल वी ऑब्टेन दैट इन्फॉर्मेशन?
पहली जानकारी तो बाप से ही मिलेगी.
द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द फादर हिमसेल्फ.
आत्मा की जानकारी बाप से मिलती है.
द इन्फॉर्मेशन ऑफ द सोल इज रिसीव्ड फ्रॉम द फादर.
परमात्मा की भी जानकारी बाप से मिलती है.
एज वेल एज द इन्फॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम सोल इज रिसीव्ड फ्रॉम द फादर.
और आत्मा परमात्मा इस सृष्टि रूपी चक्र में कैसे अपना पार्ट बजाते हैं?
And how the soul and the supreme soul play their roles in this world cycle.
आत्मा कैसे पार्ट बजाती है, परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं, वो भी सारी जानकारी बाप से ही मिलती है.
How the souls play their part, how the supreme soul plays his part, all that information is also received from the father only.
तो वो अंतर पैदा हो जाता है आत्मा में और परमपिता परमात्मा. क्या अंतर पैदा होता है?
सो अ डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द सोल एंड द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल. व्हाट इज द डिफरेंस क्रिएटेड?
आत्माएं जो भी है वो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली है.
ऑल द सोल्स आर द वंस दैट एंटर द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ.
वो सब सुख और दुख भोगने वाली है.
ऑल ऑफ देम आर द वंस दैट एक्सपीरियंस प्लेजर एंड सॉरो.
और परमात्मा परमपिता?
And what about the Supreme Father, Supreme Soul?
वो सुख दुख से परे का पार्ट हो जाता है.
He plays the part beyond pleasure and sorrow.
सुख भी नहीं भोगता और दुख भी नहीं भोगता.
He neither enjoys pleasure nor does he experience sorrow.
वो अभोक्ता कहा जाता है.
He is called अभोक्ता.
माने आत्माएं जितनी है वो सब भोगी है.
It means all the souls are भोगी. That is pleasure seekers.
और परमपिता?
And what about the supreme father?
वो अभोक्ता.
He is abhokta. That is the one who does not seek pleasures.
ये अंतर है.
This is the difference.
अगर वो भी भोक्ता बन जाए
इफ ही टू बिकम्स अ भोक्ता दैट इज प्लेजर सीकर
तो इस सृष्टि को उद्धार करने वाला कोई नहीं है
देयर इज नो वन टू अपलिफ्ट द वर्ल्ड
वो एक ही तुरीय आत्मा ऐसी है जो जन्म मरण के चक्र में आकर के सुख दुख नहीं भोगती
He alone is such a Turiya, that is unique soul, who does not experience pleasure and sorrow after entering the cycle of birth and death.
Na garbh se janm legi aur na uska mrityu kabhi hota hai.
He is not born through the womb and he never dies either.
Haan, wo pravesh karti hai.
But yes, he enters.
Jaise manushya ne jo Geeta banayi hai usme bhi likha hua praveshtum. Main pravesh karne yogi hu.
For example, In the Gita prepared by human beings as well, it has been written, Praveshtum, I am capable of entering.
फिर एक बार कह दिया प्रवेश करने योग्य हूँ.
Then on one side they have said for God, I am capable of entering.
फिर दूसरी तरफ गर्भ से जन्म दिखा दिया कृष्ण का और राम का.
And on the other side they have shown the birth of Krishna and Ram through the womb.
तो मनुष्य बुद्धि जो है वो फैसला नहीं कर पाती आखिर सच्चाई क्या
है दस द ह्यूमन इंटेलेक्ट इज अनएबल टू डिसाइड व्हाट द ट्रूथ फाइनली इज
भगवान आकर सच्चाई बताए क्या बताया था सच्चाई
गॉड कम्स एंड टेल्स द ट्रूथ विच ट्रूथ डज ही टेल अस
कि मैं अजन्मा हूँ मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता
ही सेज आई एम अजन्मा दैट इज आई एम नॉट बॉर्न थ्रू द वूम
और तुम आत्मा है
And what about you souls?
तुम आत्माएं प्रवेश भी करती हो
You souls enter into someone.
और गर्भ से भी जन्म लेती हो
As well as you are born through the womb.
अगर देव आत्माएं बनती हो
If you become deity souls,
तो गर्भ से जन्म लेने के बावजूद भी दुख सहन नहीं करती
In spite of being born through the womb, you do not suffer pain.
क्योंकि तुम गर्भ महल में आती हो कतुक त्रेता में
Because you come in the palace-like womb in the golden age and the silver age.
और द्वापर कलयुग में जो भी आत्माएं हैं वो सब गर्भ जेल में आती हैं.
While all the souls born in the copper age and the iron age come in a jail-like womb.
परमधाम से जो आती है डायरेक्ट वो गर्भ जेल में नहीं आती.
The souls who come directly from the soul world do not enter the jail-like womb.
क्योंकि परमधाम में तो जो भी आत्मा जाती है पवित्र होकर के जाती है.
Because Whichever soul goes to the soul world goes there after becoming pure.
इस सृष्टि पर जब विनाश होता है भगवान इस सृष्टि पर आता है
When destruction takes place in this world, God comes in this world.
दुनिया का स्थापना पालना और विनाश कराता है
And brings about the establishment, the sustenance, and brings the destruction of the world.
तो सब आत्माएं पवित्र होकर के वापस जा सकती है
All the souls can return to the soul world after becoming pure.
जब तक पवित्र नहीं बनी है तब तक वापस नहीं जा सकती.
Until they have become pure, they cannot return.
पवित्र का मतलब क्या?
What is the meaning of becoming pure?
पवित्र का मतलब देह की याद आना बंद.
Becoming pure means the remembrance of the body stops.
देह की याद ना.
You should not remember the body.
क्या याद आए?
What should you remember? Someone said, the soul.
आत्मा याद.
You must remember the soul.
सिर्फ आत्मा याद आए.
You must remember only the soul.
इतना पुरुषार्थ कौन करेगा?
So who will make so much पुरुषार्थ?
500-700 करोड़ आत्मा इतना पुरुषार्थ कर लेंगे?
Will 500-700 crores, that is 5-7 billion souls, make पुरुषार्थ to such an extent?
नहीं करेंगे.
They will not.
तो फिर तरकीब नुदी हुई है.
Therefore, there is a tactic that is tarkib fixed for this.
क्या तरकीब निधि हुई?
What is the tactic that is fixed?
जो अपने आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उनके लिए धर्मराज बाप बनकर के बैठा हुआ है.
For the souls who do not do पुरुषार्थ on their own, धर्मराज is sitting as the father.
क्या करेगा?
What will he do?
है? वो दंड देगा.
He will punish them.
जिनके जिनके पाप कर्म भस्म होने से रह जाएंगे
All those whose sins have not burned to ashes,
आत्म की स्थिति में नहीं रहेंगे तपस्या नहीं करेंगे पाप कर्म भस्म नहीं करेंगे
All those who do not remain in soul conscious stage, who do not perform tapasya, who do not burn their sins to ashes,
तो उनको बाप फिर धर्मराज के साथ हिसाब किताब चिकटू करेगा.
Then the father will clear their accounts with Dharmaraj.
बहुत कड़ी कड़ी सजाए.
There are very severe punishments.
वो सजाए खा खा करके तह तह करके आत्माएं पावन बनेंगी.
After suffering the punishments, crying for help, those souls will become pure.
और आत्म की स्थिति में स्थित
And then become constant in the soul conscious state.
जो जितनी जल्दी आत्म की स्थिति में स्थित होगा सदाकाल के लिए.
Whoever becomes constant in the soul conscious stage faster forever.
वो उतना ही ऊंचा पद पाएगा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में.
He will attain a post higher to that extent among the 500-700 crore, that is 5-7 billion human souls.
और जो जितनी ही देर में पावन बनेगा यानी आत्म की स्थिति धारण करेगा.
And the later someone becomes pure, that is imbibes the soul conscious stage.
वो उतनी ही नंबर उसका नीचे गिर जाए.
His number will slide down to that extent.
मान लो कोई आत्मा 700 करोड़ में नंबर पे आई.
Suppose a soul arrived at the serial number 700 crore from the supreme abode.
तो कलयुग के अंत में आकर के बस जन्म लिया और मरी जैसे मक्खी बच्चा.
It is as if it arrived at the end of the Iron Age. It was born and then died soon, just like the flies and mosquitoes.
तो मक्खी मच्छर बनना अच्छा या 84 जन्म देवता बनना अच्छा.
So is it good to become flies and mosquitoes, or is it good to become deities who take 84 births?
ऐसी भी आत्माएं हैं जो 82-83 जन्म भी सुख भोगती है.
There are also such souls who enjoy pleasures even for 82-83 births.
दुख नहीं भोगती.
They do not suffer sorrow.
अच्छी लिस्ट में आना चाहिए.
So we should come in a good list.
अभी हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में है.
Now our fate is in our hands.
क्या?
What?
भगवान ने आके हमारी मुट्ठी में हमारा भाग्य दिया हुआ है.
God has come and has given our fate in our hands.
चाहे तो हम अच्छे से अच्छे बन जाए.
If we wish, we can become the best.
और चाहे तो अच्छा है तो मक्खी मच्छर जैसे बन जाए. ओम शांति.
और इफ वी विश वी कैन बिकम लाइक फ्लाइज एंड मस्कीटोज. ओम शांति.
वॉट? वो 9 महीने पेट में पके नहीं.
इफ समवन डज नॉट बिकम मैच्योर इन द वूम फॉर 9 मंथ्स.
9 महीने पेट में न पके.
इफ समवन डज नॉट बिकम मैच्योर इन द वूम फॉर 9 मंथ्स.
और दुनिया से कनेक्शन न टूटे.
एंड इफ हिज कनेक्शन विद द वर्ल्ड डज नॉट ब्रेक.
इस दुनिया को शरीर छोड़ करके आई है आत्मा, उस दुनिया से कनेक्शन न टूटे.
इफ द कनेक्शन ऑफ द सोल हु हैज कम आफ्टर लीविंग द बॉडी इज नॉट ब्रोकन विद द वर्ल्ड.
तो वो बाप का नए बाप का बच्चा बन पाएगा.
विल इट बी एबल टू बिकम द चाइल्ड ऑफ द फादर द न्यू फादर.
ऐसे ही ये 9 दिन की भट्टी है.
सिमिलरली दिस इज अ 9 डेज भट्टी. That is Parnes.
एक दिन जाना एक दिन आना.
One day to go to the place of bhatti, one to come back from the bhatti.
और 7 दिन वहाँ दुनिया से अलग थलग करके रखा जाता है.
And for the other 7 days, the souls are kept there, disconnected from the world.
अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही सोना, अंदर ही ज्ञान सुनना, याद में बैठना.
Eating, drinking, sleeping, listening to knowledge and sitting in remembrance takes place inside itself.
Om Shanti.
Om Shanti.